साइड ए।
13 नंबर के रजिस्टर में 62 पेज।
पेज नंबर 62 इन रजिस्टर नंबर 13।
27/7/90 का प्रातः क्लास।
दिस इज द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 27/7/90।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते।
द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन।
रूहानी बाप का मतलब बिंदु नहीं।
द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल फादर रूहानी बाप इज नॉट अ पॉइंट।
सिर्फ बिंदु तो समझाया भी नहीं सकता।
जस्ट द पॉइंट कैनॉट एक्सप्लेन ईदर।
क्योंकि यहाँ शब्द लगा है बैट।
बिकॉज हियर द वर्ड सिट्स हैज बीन यूज्ड।
बैट मान
सिट्स मीन्स
जरूर किसी तन में बैठ कर।
ही डेफिनेटली सिट्स इन सम बॉडी।
बाकी बिंदी को खड़े होने बैठने सोने या दौड़ने की तो बात ही नहीं।
एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग सिटिंग स्लीपिंग और रनिंग फॉर द पॉइंट।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते।
द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन।
देह अभिमान वाले बच्चे एक तो समझ भी नहीं सकते न उनको बाप समझाते।
बॉडी कॉन्शियस चिल्ड्रन कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर डज द फादर एक्सप्लेन टू देम।
जब पहले कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो।
वेन यू एक्सप्लेन टू समवन फर्स्ट मेक इट क्लियर
कि बाप एक है।
दैट देयर इज वन फादर।
पूछना नहीं है कि बाप एक है वा अनेक है।
यू शुडंट आस्क वेदर देयर इज वन फादर और देयर आर मेनी।
ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे।
इफ यू आस्क दिस दे विल से देयर आर मेनी फादर्स।
कहना यह है बाप रचयिता गॉडफादर एक है।
यू मस्ट से देयर इज वन फादर द क्रिएटर गॉड द फादर।
बाकी सब रचना।
ऑल द रेस्ट आर हिज क्रिएशन।
रचयिता क्रिएटर एक है।
देयर इज वन क्रिएटर।
बाकी सब क्रिएशन।
ऑल द रेस्ट आर द क्रिएशन।
वो सब आत्माओं का बाप।
ही इज द फादर ऑफ ऑल द सोल्स।
जो सबका क्रिएटर है सबका रचयिता है उसको रचने वाला कोई नहीं।
द वन हु इज द क्रिएटर ऑफ ऑल देयर इज नो वन हु क्रिएट्स हिम।
और वो सबको रचने वाला है।
एंड ही इज द वन हु क्रिएट्स एवरीवन।
पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है।
एट फर्स्ट यू शुड नॉट इवन से दैट ही इज अ पॉइंट।
इसमें फिर मुझ पड़ेंगे।
दे विल बी कंफ्यूज अबाउट दिस।
पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ।
एट फर्स्ट एक्सप्लेन प्रॉपरली
कि दो बाप हैं।
दैट देर आर टू फादर्स।
लौकिक और पारलौकिक।
द लौकिक मीनिंग वर्ल्डली एंड द पारलौकिक मीनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बियॉन्ड।
लौकिक तो हर एक का होता ही।
एवरी वन सर्टनली हैज अ लौकिक फादर।
उनको कोई खुदा कोई गॉड कहते हैं।
द अदर सम कॉल हिम खुदा सम कॉल हिम गॉड। खुदा टर्म फॉर गॉड अमंग द मुस्लिम्स।
वो है पारलौकिक।
ही इज द पारलौकिक फादर।
है एक ही।
देयर इज ओनली वन।
और वो सब एक को याद करते हैं।
एंड ऑल ऑफ देम रिमेम्बर ओनली दैट वन।
पहले पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचने वाला।
फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम हैव द फर्म फेथ दैट द फादर इज द क्रिएटर ऑफ हेवन।
इसमें पक्का करने की बात क्या हुई।
व्हाट इज देयर टू मेक फर्म।
क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी समझते हैं।
बिकॉज मेनी पीपल ऑल्सो थिंक
कि बाप सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला है।
दैट द फादर इज जस्ट द वन हु नरेट्स द नॉलेज।
बाकी ज्ञान सुना के चला जाता है फिर स्वर्ग की रचना हम करते रहते हैं।
ही गोज आफ्टर नरेटिंग द नॉलेज एंड वी कीप क्रिएटिंग हेवन।
लेकिन नहीं।
बट नो।
उनको ये पक्का निश्चय कराओ।
मेक देम हैव द फर्म फेथ
कि फादर ही स्वर्ग की रचना करने वाला है।
दैट द फादर अलोन इज द क्रिएटर ऑफ हेवन।
बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने।
द फादर विल कम हियर टू मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन।
यहाँ माना
वॉट डज हियर मीन।
सूक्ष्म वतन में नहीं।
नॉट इन द सटल वर्ल्ड।
यहाँ माना इस धरती पर।
हियर मीन्स इन दिस वर्ल्ड।
आएंगे किस लिए।
फॉर वॉट विल ही कम।
स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जरूर स्वर्ग स्थापन होगा तब तो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे।
ही विल कम टू मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन। डेफिनेटली हेवन विल बी एस्टेब्लिश्ड, ओनली देन विल ही मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन।
और आएंगे, यहाँ आएंगे, इसका मतलब
एंड ही विल कम। ही विल कम हियर मीन्स
ये भविष्य में आने वाला पार्ट है, फ्यूचर का।
दिस इज अ पार्ट दैट विल कम इन फ्यूचर, इट इज अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर।
फ्यूचर की तरफ इशारा किया।
ही इंडिकेटेड द फ्यूचर,
यानी जिस तन से बोल रहे हैं।
इट मीन्स द बॉडी थ्रू विच ही इज स्पीकिंग,
ये वाणी जिस तन से बोली गई।
द बॉडी थ्रू विच दिस वाणी वॉज नरेटेड,
उसके द्वारा कोई स्वर्ग की रचना नहीं होती।
देर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवन थ्रू हिम।
तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने।
सो द फादर विल कम हियर टू मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन,
जिसको शिव जयंती भी कहते।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिव जयंती, मीनिंग द बर्थडे ऑफ शिव।
क्या?
वॉट?
जब स्वर्ग का मालिक बनाए।
वेन ही मेक्स अस द मास्टर्स ऑफ हेवन,
जब आए और जब स्वर्ग का मालिक बनाए।
वेन ही कम्स एंड मेक्स अस द मास्टर्स ऑफ हेवन,
उसको क्या कहेंगे?
वॉट विल इट बी कॉल्ड?
शिव जयंती।
शिव जयंती,
शिव की जय जयकार।
जय जयकार मीनिंग शाउट्स ऑफ विक्ट्री ऑफ शिव।
कौन सी जय जयकार?
विच जय जयकार?
कोई स्थूल जन्म नहीं है।
इट इज नॉट अ फिजिकल बर्थ,
ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की जय जयकार है।
बट इट इज द जय जयकार ऑफ द बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन।
स्वर्ग का मालिक कब बनाएंगे?
सो वेन विल ही मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन,
कब कही जाए शिव जयंती?
वेन विल इट बी सेड शिव जयंती?
प्रत्यक्षता रूपी जन्म की शिव जयंती कही जाए तो वो कब कही जाए?
If a birth in the form of revelation should be called Shiv Jayanti, when should it be said to have happened?
कौन से वर्ष में?
In which year?
36 में।
Is it in 1936?
36 में तो प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे पूरी।
It won't be called the complete revelation in 1936.
पूरी क्या? अधूरी भी नहीं?
Leave the complete revelation, but it will not even be called the incomplete revelation.
क्योंकि बाप तो बीज बोने के समय तो बाप गुप्त ही रहता है बच्चों के सामने।
बिकॉज द फादर रिमेन्स हिडन फॉर द चिल्ड्रन वेन ही सोज द सीड।
बच्चे क्या जाने कि बाप कौन है।
द चिल्ड्रन डोंट नो हु द फादर इज
और क्या करता है।
एंड वॉट ही डज।
तो कब कहेंगे?
सो वेन विल इट बी सेट टू बी शिव जयंती?
76।
इज इट इन 76?
76 में विश्व का मालिक बनाया।
डिड ही मेक एनी वन द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इन 76?
स्वर्ग का रचयिता बनाया।
डिड ही मेक एनी वन द क्रिएटर ऑफ हेवन?
बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं।
द फादर विल कम हियर टू मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिव जयंती।
तो स्वर्ग का मालिक बनाया 76 में।
सो डिड ही मेक एनी वन द मास्टर ऑफ हेवन इन 76?
हाँ, जिसको शिव जयंती कहेंगे।
Yes, this will be called Shiv Jayanti.
किसको?
What?
बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने।
The father will come here to make us the masters of heaven.
जिसको शिव जयंती भी कहते हैं।
This is also called Shiv Jayanti.
किसको शिव जयंती कहते हैं?
What is called Shiv Jayanti?
जब स्वर्ग का मालिक बनाता है।
It is when he makes us the masters of heaven.
तो कब बनाता है?
So when does he make that?
76 में।
Is it in 76?
96 में।
Is it in 96?
तो कब शिव जयंती कहेंगे? 76 में कहेंगे, 96 में कहेंगे।
So when will it be called Shiv Jayanti? Is it in 76 or in 96?
76 में।
In 76.
स्वर्ग का मालिक बनाया।
Did he make us the masters of heaven? Student said something.
हाँ, स्वर्ग का मालिक सबको तो नहीं बनाया।
Yes, he didn't make everyone the masters of heaven.
लेकिन जिसको बनाता है उसको ये पक्का निश्चय बैठ जाता है कि मैं अब स्वर्ग का मालिक बनने वाला हूँ।
But the one whom he makes into the master has this firm faith, now I am going to become the master of heaven.
तो पहले तो बुद्धि में ही निश्चय बैठेगा.
At first, the faith will sit in the intellect.
फिर स्थूल रूप में सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो.
And later there will be the revelation in the physical form in the whole world.
तो वो हुई शिव जयंती.
So that is Shiv Jayanti.
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष.
The year of the revelation of the father.
ये घोषणा भी किसने कराई बाप की प्रत्यक्षता वर्ष की?
Who made the announcement of the year of the revelation of the father?
ब्रह्मा कुमारियों ने नहीं, ब्रह्मा कुमारों ने नहीं.
Neither the Brahma Kumaris nor the Brahma Kumars.
अव्यक्त बाप दादा ने कहा.
But अव्यक्त बाप दादा said.
76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष.
That 76 is the year of the revelation of the father.
क्योंकि विदेशियों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं.
It is because the father is revealed only by the foreigners.
बाहर की दुनिया के विदेशियों की बात नहीं थी.
It was not about the foreigners of the outside world.
उन विदेशियों के पीछे पड़ करके उनकी सेवा करने की बात नहीं थी.
It was not about pursuing those foreigners and serving them.
वास्तव में बाप की प्रत्यक्षता तो बाप के बच्चे ही कर सकते हैं जो माला के मण के बनने वाले होते हैं.
इन रियलिटी इट इज ओनली द चिल्ड्रन ऑफ द फादर द वंस हु आर गोइंग टू बिकम द बीड्स ऑफ द रोजरी हु कैन रिवील हिम.
जिन्होंने बाप को अच्छी तरह पहचाना हो वो ही प्रत्यक्षता कर सकते हैं.
ओनली दोज हु हैव रिकॉग्नाइज्ड द फादर प्रॉपरली कैन रिवील हिम.
तो 76 में जो सारे जगत की बीज रूप आत्माएं.
सो इन 76 द सीड फॉर्म सोल्स ऑफ द होल वर्ल्ड
जिसे तीसरी दुनिया के लोग कहा जाता है.
हु आर कॉल्ड द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड.
पहली दुनिया कौन सी?
विच इज द फर्स्ट वर्ल्ड.
वेद की भाषा में 500 करोड़ की दुनिया.
इन द अनलिमिटेड लैंग्वेज इट इज द वर्ल्ड ऑफ द 5 बिलियन सोल्स.
दूसरी दुनिया कौन सी?
विच इज द सेकेंड वर्ल्ड.
ब्राह्मणों की जो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए.
इट इज द वर्ल्ड ऑफ द ब्राह्मिन्स हु वर बोर्न थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा.
उनको कहेंगे दूसरी दुनिया.
दैट विल बी कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड.
आधारमूल तो ब्राह्मण सभी हो गए इसमें.
ऑल द रूट सोल ब्राह्मिन्स आर इंक्लूडेड इन इट.
और तीसरी दुनिया?
एंड विच इज द थर्ड वर्ल्ड.
उनमें से भी जो विशेष चुनी हुई आत्माएं रुद्रमाला के मण के बनने वाले.
इट इज द वर्ल्ड ऑफ द स्पेशल सोल्स चोजन फ्रॉम अमंग देम द सोल्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड हु आर गोइंग टू बिकम द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला मीनिंग द रोजरी ऑफ रुद्र.
जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं हैं.
दे आर द सोल्स हु आर गोइंग टू बी किंग्स फॉर मेनी बर्थ्स.
वो रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे.
दे आर द चिल्ड्रन ऑफ रुद्र हु टेक्स ऑन अ फिरोशियस फॉर्म द फादर हु एस्टेब्लिशेस द यज्ञ ऑफ नॉलेज.
रुद्रगण जिनकी रुद्रमाला बनती.
दे आर द रुद्रगण मीनिंग फॉलोवर्स ऑफ रुद्र हु फॉर्म द रुद्रमाला.
वो है सारे विश्व के बीज चुने हुए.
They are the chosen seeds of the whole world.
तो वो बीज रूप बाप के बच्चे बीज रूप वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं.
So the seed form children of the seed form father reveal the father.
उनमें भी कौन प्रत्यक्ष करते हैं?
Even among them who reveals him?
जो विदेशी धर्मों के बीज है.
The seeds of the foreign religions.
क्योंकि चार ही मुख्य धर्म है.
Because there are only 4 main religions.
देवता इस्लामी और बौद्धि और क्रिश्चियन.
द डीटी रिलीजन इस्लाम बुद्धिज्म एंड द क्रिश्चियन रिलीजन.
तो देवता धर्म का बीज वो तो स्वयं बाप ही होता है.
द सीड ऑफ द डीटी रिलीजन इज द फादर हिमसेल्फ.
वो तो अपनी प्रत्यक्षता क्या करेगा?
हाउ विल ही रिवील हिमसेल्फ.
और अपनी प्रत्यक्षता अपने आप कोई करे तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती.
एंड देयर कैनॉट बी रेवलेशन इफ समवन रिवील्स हिमसेल्फ.
अपने को सिद्ध करने वाला कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकता.
ही हु प्रूव्स हिमसेल्फ कैन नेवर बिकम फेमस.
तो प्रत्यक्ष कौन करते हैं?
सो हु रिवील हिम.
जो विदेशी बच्चे हैं.
द फॉरेन चिल्ड्रन
इस्लाम धर्म का बीज.
द सीड ऑफ इस्लाम
क्रिश्चियन धर्म का बीज
द सीड ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन
बौद्ध धर्म का बीज
द सीड ऑफ बुद्धिज्म
तो सृष्टि के आरंभ की परंपरा में ब्रह्मा के चार पुत्र दिखाए जाते
सो इन द ट्रेडिशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड फोर सन्स ऑफ ब्रह्मा आर शोन
सनत सनातन सनंदन सनत कुमार
सनत सनातन सनंदन सनत कुमार
तो सनत कुमार को सबसे ज्ञानियों में बड़ा दिखाया गया
सो सनत कुमार इज शोन एज द एल्डेस्ट अमंग द नॉलेजेबल वंस
वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे
ही वॉज द मोस्ट नॉलेजेबल वन
और योगेश्वर भी कहे जाते थे
एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड योगेश्वर मीनिंग द लॉर्ड ऑफ द योगीज
तो जो ज्ञान योग के पुरुषार्थ में बड़ा वो ही बड़ा ठहर
द वन हु इज सीनियर इन मेकिंग द पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट ऑफ नॉलेज एंड योग इज सेड टू बी सीनियर
अब उसको सनत कुमार नाम दो या बाद में शंकर नाम दो
नाउ वेदर यू गिव हिम द नेम सनत कुमार और द नेम शंकर लेटर ऑन
बात एक ही
इट इज वन एंड द सेम
क्योंकि योगियों का ईश्वर तो एक ही होगा
बिकॉज देर विल बी ओनली वन लॉर्ड मीनिंग ईश्वर ऑफ द योगीज
ईश्वर माने शासन करने वाला
ईश्वर मीन्स द वन हु रूल्स
तो उस एक के लिए प्रत्यक्षता की बात है कि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं
सो फॉर दैट वन देर इज द टॉपिक ऑफ रेवलेशन दैट द फादर इज रिवील्ड थ्रू द चाइल्ड
लेकिन वो तो बाप का रूप ही हो गया
बट दैट इज द फॉर्म ऑफ द फादर हिमसेल्फ
क्योंकि प्रजापिता माना बाप
सिंस प्रजापिता मीन्स द फादर
तो बाप यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने जिसको शिव जयंती भी कहते हैं
सो द फादर विल कम हियर टू मेक अस द मास्टर्स ऑफ हेवन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिव जयंती
ये भी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं
यू चिल्ड्रन ऑल्सो नो दैट द क्रिएटर ऑफ हेवन क्रिएट्स हेवन ओनली इन भारत
कोई विदेशों में स्वर्ग नहीं रचते हैं
ही डजंट क्रिएट हेवन इन फॉरेन लैंड्स
उस बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई स्थूल रूप में जो विदेश है वहाँ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है
देर इज नो नीड टू रन अराउंड इन दोज फिजिकल फॉरेन लैंड्स इन ऑर्डर टू रिवील दैट फादर
भारत में ही स्वर्ग रचते जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है
ही क्रिएट्स हेवन ओनली इन भारत वेर देर इज द किंगडम ऑफ डेटीज
तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है
सो एट फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर अलोन
उनका नाम है शिव
हिज नेम इज शिव
गीता में भगवान वाच है ना
इन द गीता इट इज रिटन भगवानु वाच मीनिंग गॉड स्पोक इजंट इट
पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिखा लेना चाहिए क्या
फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मेकिंग देम हैव फेथ यू शुड मेक देम राइट व्हाट
पहले पहले क्या करना चाहिए
व्हाट शुड यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल
बाप का परिचय देना चाहिए
यू शुड गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर
और उनसे निश्चय कराए लेना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है
And you should make them have the faith that God of the Gita, who is he?
Nirakar Shiv hai ya Sakar Krishna hai?
Is he the incorporeal Shiv or the corporeal Krishna?
Brahma hai ya Nirakar is stage mein rehne wala hai?
Is he Brahma or is he the one who stays in the incorporeal stage?
Kyunki Brahma ke to jitne bhi photo khiche gaye unme धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज तो किसी में देखने में नहीं आती
बिकॉज द इनकॉर्पोरियल स्टेज लाइक दैट ऑफ द रिलीजियस फादर्स इज नॉट विजिबल इन एनी ऑफ द फोटोज ऑफ ब्रह्मा दैट वर टेकन
योगयुक्त स्टेज है
देर इज द स्टेज फुल ऑफ योग
लेकिन माता के रूप में
बट इन द फॉर्म ऑफ अ मदर
जैसे धर्म पिताओं की निराकारी स्टेज दिखाई गई है
Just like the incorporeal stage of the religious fathers is shown,
Christ ki, Mahatma Buddha ki, Guru Nanak ki, unke chehron ko dekhne se hi pata lag jata hai.
Of Christ, of Mahatma Buddha, of Guru Nanak, just by seeing their face, we come to know
ki jaise wo atma is srishti par nahi hai.
That it is as if those souls are not in this world.
Kahan baithi hui hai?
Where are they sitting?
परम धाम में बैठी हुई
दे आर सिटिंग इन द सुप्रीम अबोर्ड।
तो निराकारी स्त्री उन निराकारी धर्म पिताओं के चेहरे को प्रत्यक्ष करती है, ये धर्म पिता है।
सो द इनकॉर्पोरियल स्टेज इटसेल्फ रिवील्स द फेसेस ऑफ दोस इनकॉर्पोरियल रिलीजियस फादर्स। दे टेल अस दैट दे आर रिलीजियस फादर्स।
क्योंकि पिता होता है निराकार और माँ होती है साकार।
इट इज बिकॉज द फादर इज इनकॉर्पोरियल एंड द मदर इज कॉर्पोरियल।
तो पहले ये निश्चय कराए, लिखाई लेना चाहिए।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मेकिंग देम हैव फेथ यू शुड मेक देम राइट दिस।
गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ।
इन द गीता गॉड स्पोक आई टीच यू राजयोग।
ये मैं कहने वाला कौन, निराकार निराकारी स्टेज वाला या साकार?
हु इज द वन हु सेज आई? इज इट द इनकॉर्पोरियल वन, द वन इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज और द कॉर्पोरियल वन?
जरूर निराकारी स्टेज वाला है।
डेफिनेटली ही इज द वन इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज।
जो निराकार बनाता है, साकार क्या बनाएगा?
द वन हु मेक्स अस इनकॉर्पोरियल। What will the corporeal one make us into?
साकार तो साकार ही बनाएगा।
The one who is corporeal will make us just corporeal.
और निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकार बनाएगा। जो निराकार बनाएगा वो ही निसंकल्प स्टेज में पहुँचाएगा।
And the one who stays in the incorporeal stage will make us incorporeal. The one who makes us incorporeal, he himself will make us attain the निसंकल्प stage. मीनिंग स्टेज बियॉन्ड थॉट्स।
जिसकी स्वयं निसंकल्पी स्टेज नहीं होगी वो दूसरों को निसंकल्पी स्टेज में परम धाम वासी नहीं बना सकता।
द वन हु हिमसेल्फ डजंट अचीव द निसंकल्पी स्टेज कैन नॉट मेक अदर्स अचीव द निसंकल्पी स्टेज, ही कैन नॉट मेक देम इनटू द रेजिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम अबोर्ड।
तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ अर्थात नरसिंह नारायण बनाता हूँ।
So I teach you Rajyog, meaning I make you into Narayan from a man.
ये कौन बना सकते हैं?
Who can do this?
नर से नारायण कौन बना सकते हैं?
Who can make you into Narayan from a man?
कोई साकार बना सकता है नर से नारायण?
Can any corporeal being make you into Narayan from a man?
जो साकार होगा वो तो खुद ही नर होगा।
The one who is corporeal will himself be a man.
क्योंकि मनुष्य सब देह अभिमानी होते हैं।
Because all the human beings are body conscious.
साकारी होते हैं।
They are corporeal.
तो मनुष्य मनुष्य को कैसे नारायण बनाएगा?
So how will a human being make another human being into Narayan?
आत्माभिमानी देवता बनाएगा।
How will he make him into a soul conscious deity?
नहीं, ये तो परमात्मा का काम है मनुष्य से देवता बनाना।
नो, इट इज द वर्क ऑफ द सुप्रीम सोल टू मेक अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ डेटी।
तो जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है।
सो यू विल डेफिनेटली हैव टू एक्सप्लेन हु इज गॉड।
फिर ये भी समझाना होता है।
देन यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन
सत्युग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है,
दैट द नंबर वन लक्ष्मी नारायण ऑफ द गोल्डन एज,
जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे।
दे देमसेल्व्स विल हैव 84 बर्थ्स।
रचयिता का ही नहीं बताना है सिर्फ।
यू डोंट हैव टू टेल देम ओनली अबाउट द क्रिएटर।
क्या बताना है?
वॉट शुड यू टेल देम?
कि जो पहले नंबर की रचना है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर 84 जन्म लेते होंगे।
द नंबर वन क्रिएशन लक्ष्मी नारायण will certainly have 84 births.
पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं।
Later on, those of the other religions come.
उनों के इतने जन्म हो नहीं सकते।
They cannot have so many births.
पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं।
Only those who come first have 84 births.
बाद में आने वाले जो लक्ष्मी नारायण है सत्युग में, उनके 84 जन्म नहीं होते।
The Lakshmi Narayan who come later on in the golden age don't have 84 births.
क्या कहा?
What was said?
ये बात क्लियर हो गई?
Is this topic clear?
है?
someone said something.
उनके भी कुछ कम जन्म हो जाएंगे क्योंकि कुछ वर्ष कम हो गए.
They will have a few births less because a few years were missing from the confluence age.
अब 69 में शरीर छोड़ दिया.
Well, he, meaning Brahma Baba, left the body in 69.
उनको अपना शरीर तो मिलना नहीं है.
He is not going to get his own body in the confluence age.
शरीर कहाँ मिलेगा?
Where will he get a body?
सत्युग में जाकर के शरीर मिलेगा.
He will get a body after going to the golden age.
बच्चे के रूप में जन्म लेंगे.
He will be born in the form of a child.
तो तब तक का जो गैप हो गया.
So the gap that existed till then.
वो पूरे 84 जन्मों में से कुछ कम हुआ ना.
There is that much less from the complete 84 births, isn't there?
तो बताया क्योंकि वो भी चंद्रवंशी हुए.
So it was said because they too are Chandravanshi, meaning those belonging to the moon dynasty.
जो सूर्यवंशी होंगे वो डायरेक्ट सूर्य से जन्म लेने वाले होंगे पूरे 84 जन्म.
Those who are the Suryavanshi will be the ones who are born directly from the sun. They will have the complete 84 births.
फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, इस्लाम वंशी, क्रिश्चियन वंशी, बौद्ध वंशी.
द सूर्यवंशी, देन द चंद्रवंशी, देन द वैश्यवंशी, देन द इस्लाम वंशी, द क्रिश्चियन वंशी, देन द बौद्ध वंशी. वैश्यवंशी मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द वैश्य डायनेस्टी. इस्लाम वंशी मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द इस्लाम डायनेस्टी. क्रिश्चियन वंशी मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन डायनेस्टी. बौद्ध वंशी मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द बुद्धिस्ट डायनेस्टी.
तो नंबर वार हो गए.
दे आर नंबर वार मीनिंग दे कम एट डिफरेंट टाइम्स. टू अ स्टूडेंट. यस वॉट समवन सेड समथिंग.
प्रवेश करने वाला कोई शारीरिक जन्म होता है.
इज द एंट्रेंस इन अ बॉडी अ फिजिकल बर्थ.
84 जन्मों को 84 बाप कहेंगे.
देन विल इट बी सेड दैट देर आर द 84 फादर्स ऑफ द 84 बर्थ्स.
तो पीछे फिर और धर्म वाले आते.
सो दोज ऑफ द अदर रिलीजन्स कम लेटर.
माने सतयुग में जो बाद में आएंगे नारायण वो दूसरे धर्म वाले नारायण होंगे.
इट मीन्स द नारायण्स हु कम लेटर ऑन इन द गोल्डन एज विल बी द नारायण्स ऑफ द अदर रिलीजन्स.
दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी.
दे विल बी द सोल्स हु कन्वर्ट टू द अदर रिलीजन्स.
देवी देवता सनातन धर्म की पक्की पक्की नहीं होंगी.
दे वोंट बी फर्म इन द एंशिएंट डेटी रिलीजन.
तो पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं.
सो ओनली द वंस हु कम फर्स्ट हैव 84 बर्थ्स.
पीछे आने वालों के इतने जन्म हो न सके.
दोज हु कम लेटर कैन नॉट हैव एज मेनी बर्थ्स.
सत्युग में तो कुछ सीखते नहीं है.
इन द गोल्डन एज यू डोंट लर्न एनीथिंग.
जरूर संगम पर ही सीखते होंगे.
डेफिनेटली यू विल लर्न इन द कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ.
तो पहले पहले बाप का परिचय देना है क्या.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर. वॉट
किसी को भी समझाना होता है.
वेन यू एक्सप्लेन टू समवन.
चाहे दुनिया वालों को और चाहे घर के भांति ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तथा कथित ब्राह्मणों को.
वेदर यू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड और टू द ब्रह्मा कुमार कुमारीज हु बिलोंग टू द फैमिली द सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स.
पहले क्या समझाना है उनको.
फर्स्ट व्हाट शुड यू एक्सप्लेन टू देम.
पहले पहले बाप का परिचय देना.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव देम द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर.
दुनिया वालों को बताना होता है तो सिर्फ सामान्य नॉलेज दी जाती है.
वेन यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जस्ट जनरल नॉलेज इज गिवन.
कि तुम बिंदु आत्मा हो.
यू आर अ पॉइंट सोल.
तुम बिंदु आत्मा का बाप. परमात्मा ज्योति बिंदु है. ये तो सामान्य नॉलेज हो गई.
एंड द फादर ऑफ यू पॉइंट सोल इज द सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट. दिस इज जनरल नॉलेज.
ये परमात्मा बाप की विशेष नॉलेज नहीं हुई.
दिस इज नॉट द स्पेशल नॉलेज ऑफ द सुप्रीम सोल फादर.
विशेष नॉलेज आत्मा की भी है तो परमात्मा की भी है।
देयर इज द स्पेशल नॉलेज ऑफ द सोल एज वेल एज द सुप्रीम सोल,
एडवांस नॉलेज जिसे कहते हैं,
विच इज कॉल्ड द एडवांस नॉलेज।
आत्मा की विशेष नॉलेज क्या है?
वॉट इज द स्पेशल नॉलेज ऑफ द सोल?
हु एम आई, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ?
हु एम आई, विच सोल एम आई,
किस ग्रुप की आत्मा हूँ?
टू विच ग्रुप डू आई द सोल बिलोंग,
किस धर्म विशेष में मेरे को पार्ट बजाना है?
इन विच पर्टिकुलर रिलीजन डू आई हैव टू प्ले अ पार्ट,
किस स्थान विशेष में जन्म जन्मांतर मेरे को पार्ट बजाना है?
इन विच पर्टिकुलर प्लेस डू आई हैव टू प्ले माई पार्ट, बर्थ आफ्टर बर्थ?
ये अनुभूति होने लगी।
द सोल शुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस।
हु एम आई, मैं आत्मा कौन?
हु एम आई, हु एम आई द सोल?
बाकी सिर्फ मैं आत्मा बिंदु,
आई द सोल एम अ पॉइंट,
वो तो दुनिया की सारी आत्माएं बिंदु होती।
इन फैक्ट ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड आर जस्ट पॉइंट्स।
सब मनुष्य आत्माएं तो क्या, पशु पक्षी कीट पतंगे सब कीटाणु ढेर के ढेर सब बिंदु।
इट इज नॉट जस्ट ऑल द ह्यूमन सोल्स बट एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स मॉथ्स द न्यूमरस जर्म्स ऑल आर पॉइंट्स।
तो ये कोई परिचय नहीं हुआ खास।
सो दिस इज नॉट एनी स्पेशल इंट्रोडक्शन
कि मैं आत्मा बिंदु,
दैट आई अ सोल एम अ पॉइंट।
तो जैसे आत्मा का विशेष परिचय है आत्माओं का अलग अलग,
सो जस्ट एज देयर इज द स्पेशल इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल्स,
क्योंकि हर आत्मा अलग अलग पार्ट बजाने वाली है,
बिकॉज ईच सोल प्लेज अ डिफरेंट पार्ट,
तो वैसे ही परमात्मा का भी एक सामान्य परिचय कि परमात्मा बिंदु है।
सिमिलरली देयर इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सुप्रीम सोल विच इज दैट द सुप्रीम सोल इज अ पॉइंट।
फिर विशेष परिचय कि वो बिंदु है और उस बिंदु में क्या विशेष पार्ट भरा हुआ है।
देन द स्पेशल इंट्रोडक्शन इज दैट ही इज अ पॉइंट एंड व्हाट स्पेशल पार्ट इज रिकॉर्डेड इन दैट पॉइंट।
तो वो विशेष पार्ट बताया,
सो दैट स्पेशल पार्ट वॉज मेंशन्ड।
क्या बताया अभी मुरली में?
व्हाट वॉज मेंशन्ड इन द मुरली नाउ?
जो दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर पाता।
नो अदर रिलीजियस फादर इन द वर्ल्ड इज एबल टू डू इट।
और धर्म पिताएं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं।
अदर रिलीजियस फादर्स एस्टेब्लिश ओनली देयर रिलीजन।
बाकी दुनिया नरक ही बनी रहती।
बट द वर्ल्ड रिमेन्स जस्ट अ हेल।
नरक से स्वर्ग, स्वर्ग नहीं बनती और ही नीचे गिरती चली जाती।
द वर्ल्ड डजंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम हेल टू हेवन बट इट कीप्स डिग्रेडिंग इवन मोर।
और परमात्मा बाप क्या करते हैं?
एंड व्हाट डज द सुप्रीम सोल फादर डू?
नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाते।
ही ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड ऑफ हेल इनटू हेवन।
ये स्वर्ग बनाने का काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता।
नो वन एल्स कैन डू दिस टास्क ऑफ मेकिंग हेवन।
न धर्म पिता कर सकता, न कोई धर्म की माता कर सकती।
नीदर अ रिलीजियस फादर कैन डू इट नॉर कैन अ मदर ऑफ सम रिलीजन डू इट।
तो पहले पहले बाप का परिचय देना।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर।
जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है,
जस्ट लाइक अ सोल कांट बी सीन,
समझ सकते हैं।
यू कैन अंडरस्टैंड।
क्या समझ सकते हैं?
वॉट कैन यू अंडरस्टैंड?
कि आत्मा कौन सी आत्मा है,
विच सोल दिस इज।
देखने में तो नहीं आती आत्मा।
द सोल इज नॉट विजिबल।
लेकिन समझ सकते हैं कि ये आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है।
बट इट कैन बी अंडरस्टूड वॉट स्पेशल पार्ट दिस सोल इज गोइंग टू प्ले।
वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं।
इन द सेम वे यू कांट सी द सुप्रीम सोल।
इन आंखों से परमात्मा देखने से देखने में नहीं आएगा।
द सुप्रीम सोल वोंट बी विजिबल थ्रू दिस फिजिकल आईज।
हाँ, पार्ट के आधार पर परमात्मा पहचाना जा सकता है।
यस, अकॉर्डिंग टू हिज पार्ट द सुप्रीम सोल कैन बी आइडेंटिफाइड।
ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है।
यू कैन आइडेंटिफाई हिम थ्रू नॉलेज।
बुद्धि से समझते हैं, वो हम आत्माओं का पाप है।
यू अंडरस्टैंड थ्रू योर इंटेलेक्ट दैट ही इज द फादर ऑफ अवर सोल्स।
वो हम आत्माओं का बाप है, ये बुद्धि से समझा जा सकता है।
इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द इंटेलेक्ट दैट ही इज द फादर ऑफ अवर सोल्स।
उनको कहा जाता है परमात्मा।
ही इज कॉल्ड द सुप्रीम सोल।
किनको? जो हम आत्माओं का बाप है, आत्म की स्टेज में रहने वाले जो हैं, उनका वो बाप है।
हु? द वन हु इज द फादर ऑफ अवर सोल्स। ही इज द फादर ऑफ द वंस हु रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज।
उनका वो रक्षण करने वाला है।
ही इज देयर प्रोटेक्टर।
बाकी देह अभिमानियों का रक्षण करने वाला नहीं है।
ही इज नॉट द वन हु प्रोटेक्ट्स द बॉडी कॉन्शियस वंस।
तो ये बुद्धि से समझा जा सकता है कि वो आत्माओं का बाप है।
सो इट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द इंटेलेक्ट दैट ही इज द फादर ऑफ सोल्स।
जानवरों का बाप नहीं।
एंड नॉट द फादर ऑफ एनिमल्स।
वो सदैव पावन है।
ही इज एवर प्योर।
जो आत्माओं का बाप है वो सदैव सदैव पावन है।
द वन हु इज द फादर ऑफ सोल्स इज एवर प्योर।
मनुष्य तो कभी पतित भी होते हैं और कभी पावन भी होते हैं।
ह्यूमन बींग्स आर समटाइम्स इम्प्योर एंड समटाइम्स प्योर।
कोई ऐसी स्थिति भी बनती है जो वो पतित हो जाते हैं।
सम सिचुएशन अराइजेस दैट दे बिकम इम्प्योर एज वेल।
अनुभव करते हैं कि हमारा क्षरण हो गया।
दे एक्सपीरियंस वी हैव लॉस्ट वीकर।
नीचे गिर गए।
वी हैव फॉलन।
मन बुद्धि पतन में चली गई।
द माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज डिग्रेडेड।
इंद्रियों में क्षरण हो गया।
द इंद्रिया हैव लॉस्ट देयर वीकर। इंद्रिया मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू परफॉर्म एक्शंस एंड द सेंस ऑर्गन्स।
इंद्रियों में कमजोरी आ गई।
द इंद्रिया हैव बिकम वीक।
मनसा क्षीण हो गई।
द माइंड हैज बिकम वीक।
बुद्धि में से ज्ञान निकल गया।
द नॉलेज हैज लीक्ड आउट ऑफ द इंटेलेक्ट।
ये अनुभव तो मनुष्य करते हैं।
दिस इज एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बींग्स।
लेकिन परमात्मा, परमात्मा ऐसा किसी भी स्थिति में कोई भी संग के रंग में ये अनुभव नहीं करेगा क्या?
बट द सुप्रीम सोल विल नॉट एक्सपीरियंस दिस इन एनी सिचुएशन और इन एनी कलर ऑफ द कंपनी। वॉट?
कि मेरा पतन हो गया। वो तो सदाशिव है।
आई हैव डिग्रेडेड। ही इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सदाशिव
सदैव पावन है, एवर प्योर है।
ही इज एवर प्योर।
उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता।
ही हैज टू कम एंड मेक द इम्प्योर वर्ल्ड प्योर।
अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे कैसी भी स्टेज में,
इफ ही टू एक्सपीरियंसेस इम्प्यूरिटी इन एनी स्टेज,
किसी के संग के रंग में आए,
इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ हुएवर ही इज,
कैसे भी कीचड़ में हो,
इन विच एवर काइंड ऑफ मड ही इज,
अगर वो भी पतित पने का अनुभव करे,
इफ ही टू एक्सपीरियंसेस इम्प्यूरिटी,
तो पतितों को पावन कोई नहीं बना सकता।
देन नो वन कैन मेक द इम्प्योर वंस प्योर।
तो उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है।
सो ही हैज टू कम एंड मेक द इम्प्योर वर्ल्ड प्योर।
तो वो तो सदैव पवित्र है।
ही इज एवर प्योर।
तो पहले बाप एक है ये सिद्ध करके बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वो भी स्वतः सिद्ध हो जाएगा।
So first of all, by proving that there is one father, it will automatically be proved that Krishna is not God of the Gita.
क्या?
What?
अगर ये साबित हो जाएगा कि गीता का भगवान वो निराकार बाप एक है.
If it is proved that God of the Gita is the one incorporeal father,
तो बुद्धि में से अपने आप निकल जाएगा.
Then it will automatically be removed from the intellect.
कि जो दूसरा है
That the other one,
क्योंकि भगवान तो एक ही होगा।
Because there will be only one God.
तो जो जिसको हम दूसरे को भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं हो सकता।
So the other one, whom we consider as God, cannot be God.
गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगा।
It will also be proved that God of the Gita is not Krishna.
तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है।
You children have to prove. And say that only the one father is called the truth.
जो बाप ever pure है.
That father is ever pure.
कभी पतित नहीं बनता.
He never becomes impure.
Ever pure की ही पूजा होती है.
Only the one who is ever pure is worshipped.
पतित की कभी पूजा नहीं होती.
The impure one is never worshipped.
पवित्रता की ही पूजा की जाती.
Only purity is worshipped.
देवताओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है.
Temples are built for deities and they are worshipped.
शिव बाबा के मंदिर बनाकर उनकी पूजा होती है.
शिव बाबा's temples are built and he is worshipped.
सन्यासियों के मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती क्योंकि वो ever pure नहीं है.
No temples are built for the sannyasis to worship them because they are not ever pure.
क्या?
What?
जब स्त्री के संग में पहुँचेंगे तो पतित हो जाएंगे.
When they come in contact with a woman, they will become impure.
जंगल में चले जाएंगे तो पावन रह सकेंगे.
And when they go to the jungle, they will be able to remain pure.
तो उनको सदा पावन कहेंगे क्या?
So will they be called ever pure?
सदा पावन तो हुए नहीं.
They are not ever pure.
तो ये इस बात को गहराई से समझना है.
So this topic has to be understood deeply.
कि पवित्रता वाले वातावरण में रह करके तो सब पवित्र रह सकते हैं.
That everyone can remain pure by living in a pure atmosphere.
लेकिन अपवित्र वातावरण में कीचड़ में रह करके जो पावन रहे.
But the one who remains pure while living in an impure atmosphere in Maya.
और सदा पावन रहे.
And the one who stays pure forever.
कभी पतित न हो.
Who never becomes impure.
तो वो ही ever pure है.
Only he is ever pure.
बाकी सब को pure नहीं कहेंगे.
The rest of all the people won't be called pure.
तो एक बाप ही ट्रुथ कहा जाता है.
Only the father is said to be truth.
जो ever pure है वो ही ट्रुथ है.
Only the one who is ever pure is truth.
और बाकी सब कुछ न कुछ झूठ जरूर है.
And what about the rest? All the rest are certainly false to some extent.
है ये झूठ कंद की दुनिया.
This world is anyway a land of falsehood.
बत्ती मार के शास्त्रों आज से उतरते ही आए हो.
You have just been falling by reading the scriptures etc. of the path of bhakti.
क्योंकि लिखने वाले कौन है?
Because who are the ones who wrote them?
हैं? भक्ति मार्ग का शास्त्र लिखने वाले कौन?
Who are the writers of the scriptures of the path of bhakti?
रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाई जाते.
The Vedas and scriptures are shown in the hands of Ravan.
तो रावण ही उनका रचयिता होगा.
So Ravan himself would have been their creator.
पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम हो जाती.
While having rebirths, the number of the celestial degrees decrease.
किसकी?
Whose?
किसकी कम हो जाएंगी कलाएं?
For whom will the number of celestial degrees decrease?
जो संशय निश्चय के जन्म मरण के चक्र में आएगा.
The one who comes in the cycle of the birth and death, of doubt and faith.
उसकी कलाएं कम होती जाएंगी.
The number of his celestial degrees will keep decreasing.
तो क्या करना चाहिए?
So, what should you do?
सदा निश्चय बुद्धि होना चाहिए.
You should always have a faithful intellect.
एक बार बाप को ज्ञान की दृष्टि से पहचान लिया.
Once you recognized the father through the eyes of knowledge.
तो फिर निश्चय कभी टूटना नहीं चाहिए.
Then the faith should never break.
अगर टूटता है बीच बीच में तो पतन जरूर होगा.
If the faith breaks in between, then there will definitely be degradation.
तो सबसे ज्यादा पतित भारतवासी होते हैं या विदेशी?
So, do the residents of Bharat, Bharatvasis or the foreigners become the most impure?
भारतवासी क्यों?
A student, the Bharatvasis. The Bharatvasis. Why?
क्योंकि सबसे ज्यादा जन्म मरण के चक्र 84 में भारतवासी आते हैं.
It is because the Bharatvasis come in the cycle of birth and death of the 84 births the most.
दूसरे देश के विदेशी, दूसरे धर्म वाले?
The foreigners of the other countries, those belonging to other religions.
न ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, न ज्यादा उनका मन बुद्धि रूपी आत्मा का पतन होता है.
Neither come a lot in the cycle of birth and death, nor is there so much degradation of their soul in the form of the mind and intellect.
तो यहाँ शूटिंग हो रही है.
So, the shooting is happening here.
क्या शूटिंग हो रही?
What shooting is there?
हाँ, आत्मा की भी शूटिंग हो रही है.
Yes, there is the shooting of the soul as well.
ये शूटिंग हम अब जैसी चाहें वैसी भरें।
Now we may record, meaning perform this shooting as we wish.
अगर बार बार निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं तो आत्मा का पतन जरूर होगा।
If we come again and again in the cycle of faith and doubt, then there will definitely be degradation of the soul.
तो पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कम होती गई।
So the number of celestial degrees kept decreasing while having rebirths.
ये कर्म कांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है ना?
All the topics about rites and rituals, pilgrimages are in the scriptures of the path of bhakti. Aren't they?
कर्म कांडों में क्यों फंस गए?
Why did we entangle ourselves in rites and rituals?
हैं? द्वापर के आदि में तो एक शिवलिंग की पूजा होती थी।
In the beginning of the copper age, only one shivling was worshipped. Shivling, meaning an oblong stone worshipped all over India as the memorial of Shiv.
उसमें भी ज्योतिबिंदु हीरा लगा हुआ था।
And in it, a diamond, the memorial of the point of light, was embedded.
उसकी तरफ बुद्धि आकर्षित कराएगी।
The intellect was made to be attracted towards that diamond.
तो वो हीरा ही याद करते रहते।
So we should have remembered just the diamond.
फिर बाद में ये ढेर के ढेर कर्मकांड कहाँ से आ गए?
Then later on, how did these numerous rites and rituals come from?
हैं? तो जरूर जो आपकी विचारी भक्ति की शुरुआत है, वो किसी ने तो कराई होगी।
So certainly, someone must have enabled us to start the unadulterated bhakti.
हैं? वो जरूर हुआ ऊंचे से ऊंचा गुरु।
He surely is the highest on high guru.
और बाद में फिर व्यभिचारी भक्ति की शुरुआत हुई।
Later on, the adulterous bhakti, व्यभिचारी भक्ति started.
तो वो भी कराने वाले कोई न कोई जरूर देहधारी गुरु हुए।
So, there certainly were some bodily gurus to start it too.
तो ये कर्मकांड के तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं, जिनसे कलाएं कम होती चली जाती।
So, all these topics of the rites and rituals, pilgrimages, etc., due to which the number of celestial degrees keep decreasing, are in the scriptures of the path of bhakti.
ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन नहीं।
There is no description of these topics in the knowledge.
ज्ञान ये नहीं कहता कि कर्मकांड करो भांति भांति के।
Knowledge doesn't say perform these rites and rituals of various kinds.
तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो, नहीं।
Go to pilgrimage places, have a bath in the Ganges. No.
यहाँ कोई शास्त्र नहीं।
There are no scriptures here.
बाप आकर के सारा राज समझाते। क्या?
The father comes and explains all the secrets. What?
यहाँ कोई लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ने की बात नहीं है।
Here, it is not about reading the written scriptures.
यहाँ किस बात? ये बात क्या है यहाँ?
What is the principle here?
यहाँ तो बाप ही सन्मुख आकर मुख के द्वारा माउथ टू माउथ सारा समझाते हैं।
Here the father himself comes face to face and explains everything through a mouth, mouth to mouth.
वो समझाया हुआ जब कोई दूसरा सुनाता है तो कुछ न कुछ उसमें अपने मिक्स कुछ न कुछ मिक्स जरूर होगा।
When someone else narrates the topics that were explained, then something will certainly be mixed in it.
तो ज्ञान डिग्रेड हो जाएगा या ज्यों का त्यों बना रहेगा?
So, will the knowledge degrade or will it remain as it is?
कुछ न कुछ डिग्रेड हो।
It will degrade to some extent.
चलो टैप है, टैप ज्यों का त्यों सुनाएगा?
All right. There is the tape recorder. The tape recorder will play the murli as it is.
जैसी आवाज बोले वैसी भरी जाएगी।
It will record the voice just the way it is spoken.
लेकिन नहीं।
But it is not so.
टैप भी सेकेंड स्टेज हो जाएगी। क्यों?
Even the tape recorder will be second stage, meaning second class. Why?
क्योंकि उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे सुनाने वाले की।
Because the vibrations of the narrator won't be in it.
माहौल नहीं होगा।
There won't be the atmosphere.
दृष्टि की पावर नहीं होगी।
there won't be the power of drishti, meaning the power transmitted through the eyes.
और बाप जब सुनाते हैं तो सन्मुख सुनाते हैं.
And when the father narrates knowledge, he narrates it face to face.
उसमें दृष्टि की पावर होती है.
It has the power of drishti.
Vibrations होते हैं, माहौल बना हुआ होता है.
There are his vibrations in it, and there is the atmosphere.
तो यहाँ कोई शास्त्र नहीं है.
So there are no scriptures here.
शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए होते हैं.
The scriptures are written by human beings.
उनका वैसा असर होगा जैसे सुनाने वाले लिखने वाले मनुष्य होंगे.
They will have an effect according to the human beings who narrate and write them.
और यहाँ तो बाप सन्मुख आकर के समझाते हैं.
Whereas here, the father comes and explains face to face.
सारा राज बताते.
He tells you all the secrets.
पहले पहले तुम बच्चे जीत पाएंगे.
First of all, you children will gain victory.
इस पर कि भगवान एक निराकार है न कि साकार.
By proving the point, there is one incorporeal God. He is not corporeal.
क्या कहा?
What was said?
कौन सी बात पर पहले जीत होगी?
By explaining which topic will you gain victory first?
किसी बात को समझाने के ऊपर जीत होगी.
You will gain victory by explaining this very topic.
कि परमात्मा जो होगा वो निराकारी स्टेज वाला होगा या साकार स्टेज वाला होगा.
Will the supreme soul be the one with an incorporeal stage or will he be in the corporeal stage?
निराकारी स्टेज वाला ही परमात्मा होता है. परमात्मा होता ही है निराकार.
Only the one with an incorporeal stage is the supreme soul. The supreme soul is just incorporeal.
जैसे और धर्म पिताएं धर्म स्थापन करने वाले निराकारी स्टेज में दिखाए गए हैं.
जस्ट लाइक द अदर रिलीजियस फादर्स हु एस्टेब्लिश्ड अदर रिलीजियंस हैव बीन शोन इन द इनकॉर्पोरियल स्टेज.
वैसे उन धर्म पिताओं बापों का भी बाप जो होगा वो तो और ही ज्यादा निराकारी स्टेज में होगा.
द वन हु इज द फादर ऑफ दोज रिलीजियस फादर्स द फादर ऑफ द फादर्स विल बी इन अ ग्रेटर इनकॉर्पोरियल स्टेज.
तो इस बात पर ही तुम बच्चों को पहले जीत पहन लिए.
So at first you children have to gain victory by explaining this very topic.
इस बात पर ही जीत पहननी.
You have to gain victory by proving this very point.
यही बात पहले समझानी.
You have to explain this very topic first.
परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच.
The supreme father supreme soul God Shiv says.
ज्ञान का सागर सबका बाप.
The ocean of knowledge. The father of all. Side B.
Side 97 का प्रातः क्लास.
Morning class of the 27-7-90.
सीरियल नंबर के रजिस्टर में 62 पेज का मध्यांत.
In the end of the middle portion of page number 62 of register number 13.
अर्थात पहले पेज के मध्यांत की वाणी.
Meaning the वाणी of the end of the middle part of the first page.
बात चल रही थी यहाँ कोई शास्त्र नहीं है मनुष्यों के लिखे हुए.
We were discussing the topic. Here there are no scriptures written by human beings.
यहाँ तो बाप सन्मुख बैठ करके सारा राज समझाते.
Here the father sits in front of the children and explains all the secrets.
तो पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है. कोई साकार मनुष्य भगवान नहीं हो सकता.
So at first you children will gain victory by explaining the topic that there is one incorporeal God. A corporeal human being cannot be God.
Parampita Paramatma Shiv Bhagavan Vach.
The Supreme Father Supreme Soul God Shiv speaks.
Gyan ka sagar sab ka baap wo hai.
That one is the ocean of knowledge, the father of all.
Krishna to sab ka baap ho nahi sakta.
Krishna cannot be the father of all.
Krishna kiska baap hoga?
Whose father will Krishna be?
Krishna to swayam sakar.
Krishna himself is corporeal.
To sakar ka baap bhi kaun hoga?
So who will be the father of a corporeal being?
Sakar ka baap sakar.
The father of a corporeal being will be corporeal.
Sakar mein kitne bacche paida kiye jayenge?
How many children can a corporeal being have?
Krishna to kisko keh nahi sakta कि देह के सब धर्म छोड़ माँ में कम याद करू।
कृष्णा कैनॉट से टू एनीवन लीव ऑल द बॉडीली रिलीजन्स एंड रिमेम्बर मी अलोन।
क्यों नहीं कह सकता है?
व्हाई कांट ही से दैट?
क्योंकि खुद देह अभिमान में होता है।
बिकॉज ही हिमसेल्फ इज बॉडी कॉन्शियस।
जो कहेगा कि मुझे एक को याद करो और खुद साकार हो।
इफ द वन हु सेज रिमेम्बर मी अलोन इज हिमसेल्फ कॉर्पोरियल
तो दूसरों को भी क्या बनाएगा?
वॉट विल ही मेक द अदर्स एज वेल?
साकार ही बनाएगा।
ही विल मेक देम जस्ट कॉर्पोरियल।
निराकार कैसे बनाएगा?
हाउ कैन ही मेक देम इनकॉर्पोरियल?
क्योंकि साकार मनुष्यों को तो खुद।
बिकॉज द कॉर्पोरियल ह्यूमन बींग्स देम सेल्स
क्या होता है?
वॉट डू दे हैव?
स्वार्थ होता है।
दे हैव सेल्फिशनेस।
साकार मन रथ वाला।
कॉर्पोरियल बींग मीन्स द वन विथ अ चैरियट।
स्व रथ।
स्व रथ
अपने रथ के लिए जो करे सो स्वार्थी मन साकारी।
द वन हु डज एक्शंस फॉर हिज चैरियट इज स्वार्थी सेल्फिश मीनिंग कॉर्पोरियल।
और परमात्मा?
एंड वॉट अबाउट द सुप्रीम सोल?
वो तो है ही निराकार, उसका तो अपना रथ होता ही नहीं।
ही इज एनीवे इनकॉर्पोरियल, ही डजंट हैव हिज ओन चैरियट।
तो जिसका रथ ही नहीं वो कैसे स्वार्थी होगा?
सो द वन हु डजंट हैव अ चैरियट एट ऑल हाउ विल ही बी सेल्फिश?
वो ही निष्कामी हो सकता है।
ही अलोन कैन बी विदाउट डिजायर्स।
बाकी सब दुनिया में जितने भी हों सब सकामी हैं।
ऑल द रेस्ट ऑल दोज हु आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड हैव डिजायर्स।
निष्कामी मनुष्य कोई हो नहीं सकता।
नो ह्यूमन बींग कैन बी विदाउट डिजायर्स।
तो है ये बहुत सहज बात समझना और समझाना।
सो इट इज अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन
कि निराकार भगवान हो सकता है।
दैट एन इनकॉर्पोरियल बींग कैन बी गॉड।
कोई साकार भगवान नहीं हो सकता।
अ कॉर्पोरियल बींग कैन नॉट बी गॉड।
परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ करके भक्ति में पक्के हो गए हैं।
बट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम फर्म इन भक्ति बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा।
शास्त्र जो मनुष्यों के लिखे हुए पढ़े।
दे रीड द स्क्रिप्चर्स रिटन बाय ह्यूमन बींग्स
तो उन्हें पढ़ पढ़ करके वो पक्के हो गए।
सो दे बिकेम फर्म इन भक्ति बाय रीडिंग देम।
चाहे वो बाहर की दुनिया के शास्त्र हो।
वेदर दे आर द स्क्रिप्चर्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड
और चाहे वो ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया के शास्त्र हो।
और द स्क्रिप्चर्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंसेज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स
मुरलियों के पत्ते हो।
द पेजेस ऑफ द मुरली
वो भी लिखे किसने छपाए किसने?
हु रोट देम एज वेल? हु प्रिंटेड देम?
भगवान ने।
गॉड?
मनुष्यों ने छपाए।
ह्यूमन बींग्स प्रिंटेड देम।
तो मनुष्य जो कुछ करते हैं उसमें कुछ न कुछ अपना मिक्स जरूर हो जाए।
सो वॉट एवर ह्यूमन बींग्स डू समथिंग और द अदर ऑफ देयर ओन विल डेफिनेटली बी मिक्स्ड इन इट।
दूध का भरा हुआ घड़ा हो।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉट फुल ऑफ मिल्क
और उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए।
एंड अ ड्रॉप ऑफ स्नेक पॉइजन इज एडेड टू इट।
तो क्या हो जाएगा?
देन वॉट विल हैपन?
सारा ही विष हो जाएगा।
द होल ऑफ इट विल बिकम पॉइजन।
परमात्मा की बोली हुई वाणी वो सन्मुख ही असर करेगी।
सो द वाणी नरेटेड बाय द सुप्रीम सोल विल हैव एन इफेक्ट ओनली वेन हर्ड फेस टू फेस।
सन्मुख सुनने वालों को असर करेगी।
इट विल अफेक्ट दोज हु लिसन टू इट फेस टू फेस।
उसमें जादू होगा।
देर विल बी मैजिक इन इट।
बाकी फिर वो मनुष्य उसको दोबारा जब सुनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स करेंगे।
वेन ह्यूमन बींग्स नरेट इट अगेन दे विल मिक्स समथिंग ऑफ देयर ओन इन इट।
जब लिखेंगे तो भी मिक्स करेंगे।
दे विल मिक्स समथिंग वेन दे राइट इट।
छपाएंगे तो भी कुछ न कुछ गलतियाँ रह जाएंगी।
ऑल्सो वेन दे प्रिंट इट सम मिस्टेक्स विल बी लेफ्ट इन इट।
तो उसमें कुछ न कुछ मिक्स होने से वो सारा का सारा विष मिस हो जाए।
बिकॉज ऑफ समथिंग बींग मिक्सड इन इट द होल ऑफ इट बिकम्स पॉइजन।
ज्ञान की जगह अज्ञान हो जाता है।
इंस्टेड ऑफ नॉलेज ज्ञान इट बिकम्स इग्नोरेंस अज्ञान।
तो मनुष्य शास्त्र पढ़ पढ़ के पक्के हो जाते हैं भक्ति मार्ग।
सो ह्यूमन बींग्स बिकम फर्म इन द पाथ ऑफ भक्ति बाई रीडिंग द स्क्रिप्चर्स।
जैसे यहाँ मुरलियों के पत्ते पढ़ पढ़ करके उसमें बार बार लिखा हुआ है ऊपर।
जस्ट लाइक हियर आफ्टर रीडिंग द पेजेस ऑफ द मुरलीज ऑन द टॉप इट इज रिटन अगेन एंड अगेन।
क्या लिखा हुआ है मुरलियों?
व्हाट इज रिटन इन द मुरलीज?
पिताश्री शिव बाबा याद।
पिताश्री शिव बाबा याद है। डू यू रिमेम्बर पिताश्री शिव बाबा?
तो शिव बाबा कौन हो गया?
सो हू बिकेम शिव बाबा?
पिताश्री ब्रह्म।
पिताश्री ब्रह्म।
तो बार बार रोज रोज वो मुरली पढ़ना, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज प्रैक्टिस करते करते बुद्धि में ये पक्का हो गया।
रीडिंग द सेम मुरलीज डेली एंड रिपीटेडली बाय प्रैक्टिसिंग इट डेली इट बिकेम फर्म इन द इंटेलेक्ट।
ये पिताश्री ब्रह्मा ही भगवान का रूप है।
दैट पिताश्री ब्रह्मा अलोन इज द फॉर्म ऑफ गॉड।
तो जब फाउंडेशन ही ऐसा पड़ गया शुरू से तो वो पक्का हो जाता है।
सो व्हेन सच अ फाउंडेशन इज लेड फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ दैट बिकम्स फर्म।
तो ये बात जो पक्की बुद्धि में बैठ गई कि पिताश्री ब्रह्मा ही शिव बाबा है।
सो दिस टॉपिक दैट पिताश्री ब्रह्मा हिमसेल्फ इज शिव बाबा सेट फर्मली इन द इंटेलेक्ट।
ये पक्का हुआ बात इसको निकालने के लिए।
देन टू रिमूव दिस टॉपिक That has become firm in the intellect.
हाँ, फिर ये बात बतानी पड़े।
Student must have said something. Yes, it should be explained.
पहले ये बात पक्की करानी पड़े कि परमात्मा तो निराकार है।
First, this topic will have to be made firm. The Supreme Soul is incorporeal.
आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर के परिक्रमा देते हैं।
Nowadays, the scriptures, etc. are kept in vehicles and are taken on a parikrama, meaning procession.
Hein?
Student must have said something.
हाँ, गाड़ी में शास्त्रों को रख लेंगे ट्रक में और ट्रक में शास्त्रों को रख कर के परिक्रमा देते हैं।
Yes, they will keep the scriptures in a vehicle or truck and they take it on a parikrama.
कब? आजकल।
When? Nowadays.
पुराने जमाने में नहीं ऐसा करते थे।
They didn't do this in the old days.
और आजकल ऐसा करने लगी।
But nowadays they started doing this.
ये भी कहाँ की यादगार?
Of Venice this a memorial too?
कैसे?
Someone must have said something. How?
हैं?
Someone said something.
हैं? कौन?
Who?
कौन से ट्रक में ले जाते?
In which truck do they take it? Students. The truck like intellect.
नहीं, ट्रक माने गाड़ी?
No, truck means a vehicle.
शरीर रूपी गाड़ी?
The body in the form of a vehicle.
शरीर रूपी कार या ट्रक?
The body in the form of a car or a truck.
जो ज्यादा पुरुषार्थ करे, ज्यादा लोड उठाए तो ट्रक?
The one who makes more पुरुषार्थ, the one who carries more load is a truck.
कम लोड उठाए तो कार?
And if it carries lesser load, it is a car.
हाँ?
Student said something. Yes.
तो शिव बाबा का जो रथ बनता है वो तो ट्रक हो गया।
So, the one who becomes शिव बाबा's chariot is a truck.
हाँ?
Someone said something. Yes.
उस ट्रक ने जरूर संगम युग में कोई शास्त्र का वजन ढो करके परिक्रमा लगाई होगी सारे भारत में।
इन द कॉन्फ्लुएंस एज दैट ट्रक मस्ट हैव कैरीड द लोड ऑफ सम स्क्रिप्चर एंड बीन टेकन ऑन परिक्रमा इन द होल ऑफ भारत।
तो उसकी यादगार में जगन्नाथ के मंदिरों में शास्त्रों को ट्रक में रख करके परिक्रमा लगाते।
सो एज अ मेमोरियल ऑफ इट इन द टेम्पल्स ऑफ जगन्नाथ दे कीप द स्क्रिप्चर्स इन अ ट्रक एंड टेक इट ऑन अ परिक्रमा।
तो शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं आजकल।
सो नावडेज दे टेक अ परिक्रमा कीपिंग द स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा इन अ व्हीकल।
हाँ?
समवन सेड समथिंग।
हाँ, जहाँ जहाँ जगन्नाथ के मंदिर होते हैं वहाँ ट्रक में शास्त्र रख लेते हैं।
यस, वेर एवर देर आर द टेम्पल्स ऑफ जगन्नाथ दे कीप द स्क्रिप्चर्स इन अ ट्रक।
और साथ रख करके उनकी मूर्ति रख करके परिक्रमा लगाते
एंड कीपिंग द स्क्रिप्चर्स कीपिंग हिज मीनिंग जगन्नाथ आइडल दे टेक इट ऑन अ परिक्रमा
चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं
दे टेक इवन द पिक्चर्स एंड द ग्रंथ इन अ परिक्रमा
या सिख लोग भी
वॉट द सिक्स टू
हाँ ग्रंथ को रख लेंगे और फिर उसकी परिक्रमा उसको परिक्रमा दिलाएंगे
यस दे विल कीप द ग्रंथ एंड टेक इट ऑन अ परिक्रमा ग्रंथ मीनिंग होली बुक ऑफ द सिक्स
फिर घर ले आकर के सुलाएंगे
Then they bring it home and put it to sleep, meaning keep it aside.
अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते
Now you children know that we become क्षत्रियास वैश्यास शूद्रास from deities. क्षत्रियास meaning members of the warrior class. वैश्यास meaning members of the merchant class. Shudras, meaning the fourth and the lowest division in the Indo-Aryan society.
Kya ka?
What was said?
Wo to, aise hi sulaye dete hain, aise hi parikrama lagaye dete hain, uska arth kuch nahi jante.
They simply put it to sleep, take it on the parikrama. They know nothing about its meaning.
Lekin abhi hum bachche is baat ke raaz ko jante hain. Kya?
But now we children know the secret of this topic. What?
क्या राज को जानते हैं
What secret do we know?
कि वही रामकृष्ण की आत्मा जिस शरीर रूपी ट्रक में बैठ करके शास्त्रों को लेकर के परिक्रमा लगाती है घर घर में जाके संदेश देती है
द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ट्रक इन विच द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्ण सिट एंड टेक द स्क्रिप्चर्स ऑन अ परिक्रमा गो हाउस टू हाउस एंड गिव द मैसेज
वही फिर बाद में जब शूटिंग का जो चक्र चलता है उस चक्र में फिर विशेष पार्ट बजाती है
लेटर व्हेन द साइकिल ऑफ द शूटिंग रोटेट्स दे देमसेल्फ प्ले अ स्पेशल पार्ट इन दैट साइकिल
कौन सा पार्ट
व्हाट पार्ट
सत्यु की शूटिंग में सत्व प्रधान देवता का पार्ट
द पार्ट ऑफ अ सत्व प्रधान डेटी इन द शूटिंग ऑफ द गोल्डन एज
त्रेतायु की शूटिंग में क्षत्रिय का पार्ट
द पार्ट ऑफ अ क्षत्रिय इन द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज
द्वापर में वैश्य विशेष का पार्ट
द पार्ट ऑफ अ वैश्य मीनिंग अ विशियस पर्सन इन द कॉपर एज
और कलयुग में शूद्र का पार्ट
एंड द पार्ट ऑफ अ शूद्र इन द आयरन एज
तो पार्ट बजाना एक बात
सो टू प्ले अ पार्ट इज वन थिंग
और असलियत होना दूसरी बात होती
एंड द रियलिटी इज अनदर थिंग
जैसे कोई रंगमंच पर पार्ट बजाता है जाके गधे का
Just like someone goes on stage and plays the part of a donkey.
तो क्या गधा हो गया
So, is he actually a donkey?
है?
Someone said something.
हाँ अगर पार्टधारी अपने पार्ट को जानता है
Yes, if the actor knows his part.
तो वो कोई गधा का पार्ट बजाकर गधा है थोड़े ही
He just plays the part of a donkey. He isn't a donkey in reality.
इस बात की गहराई को जो देखने वाले शास्त्रवादी हैं भक्ति मार्ग वाले पक्के वो नहीं समझ पाते
द वंस हु सी दिस द वंस हु बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स हु फॉर्मली बिलोंग टू द पाथ ऑफ भक्ति आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक
वो समझते हैं गधा ही होगा देह अभिमानी की मिट्टी में बार बार लौटने वाला
दे थिंक ही हु रोल्स ओवर अगेन एंड अगेन In the soil of body consciousness, will only be a donkey.
तो वो उसको उसी रूप में देख लेते
So they see him in that form.
और जिस रूप में उन्होंने देखा है वैसे ही उन्होंने जगन्नाथ के मंदिर में गंदे चित्र बनाए दिए
And the form in which they have seen him, they made dirty pictures in the Jagannath temple accordingly.
तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं
So now you children know that we become Kshatriyas, Vaishyas, Shudras from deities.
ये चक्कर लगाते हैं शूटिंग पीरियड में भी और ब्रॉड ड्रामा में भी
We take this round in the shooting period as well as in the broad drama.
चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रख देते हैं सुलाने के लिए
Instead of the cycle, they take them meaning the scriptures on a round, and then keep it in the house and put it to sleep.
Unka ek mukarrar din rehta hai.
They have a fixed day.
Kinoka?
Who?
Parikrama dilane ke liye unka ek mukarrar din hota hai.
To take it on parikrama, they have a fixed day.
Jab parikrama dilate hain to pehle ye siddh karke batlana hai.
When you take it on parikrama, first you have to prove and explain that
Shri Krishna Bhagavan vach nahi hai.
It isn't God Shri Krishna who speaks.
Jab parikrama dilate hain tab siddh karke batlana hai ki Shri Krishna Bhagavan vach nahi hai.
When the scriptures are taken on a parikrama, you have to prove and explain that it isn't God Shri Krishna who speaks.
Parantu Shiv Bhagavan vach.
But it is God Shiv who speaks.
Uvach kisne kiya?
Who spoke?
Bindi uvach nahi kar sakti jisko tum nirakar Bhagavan samajhte ho.
The point, meaning Bindi, the one whom you consider to be the incorporeal God, can't speak.
शिव भगवान वाच कहते हैं तो वो क्या समझ लेते हैं?
What do they understand when you say God Shiv spoke?
कि बिंदी ने उवाच किया.
They think that the point spoke.
बिंदी उवाच नहीं करती.
Neither the point speaks.
न कृष्ण भगवान उवाच करता है, कृष्ण तो भगवान होता ही नहीं.
Nor does God Krishna speak. Krishna is certainly not God.
उवाच कौन करता है वास्तव में?
Who speaks in reality?
भगवान उवाच जिसे कहते हैं वो तो निराकारी स्टेज वाला उवाच करता है.
द वन फॉर हुम इट इज सेड गॉड स्पोक, इट इज द वन विद एन इनकॉर्पोरियल स्टेज हु स्पीक्स.
शिव ही पुनर्जन्म रहते.
शिव अलोन इज फ्री फ्रॉम रीबर्थ.
कृष्ण पुनर्जन्म रहते हैं, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं सुना होगा.
यू वुडंट हैव हर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्चर्स दैट कृष्ण इज फ्री फ्रॉम रीबर्थ.
क्या?
व्हाट?
कि कृष्ण और बलराम पुनर्जन्म रहते हैं? नहीं.
दैट कृष्णा एंड बलराम आर फ्री फ्रॉम रीबर्थ. नो.
उनके लिए तो कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का जो जन्म था वो फिर द्वापर में आकर के कृष्ण बलराम बने.
फॉर देम दे से दैट द वंस हु वर बोर्न एज राम एंड लक्ष्मण देमसेल्व्स बिकेम कृष्णा एंड बलराम आफ्टर गोइंग टू द कॉपर एज.
तो पुनर्जन्म रहते कहाँ हुए?
सो They weren't free from rebirth.
वो तो जन्म वाले हो गए, जन्म के चक्र में आने वाले.
They became the ones who are born, the ones who come in the cycle of birth and death.
तो शिव ही पुनर्जन्म रहते हैं.
So, Shiv alone is free from rebirth.
तो कौन सा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं?
Which is the deity who is said to be free from rebirth?
एक शंकर ही ऐसा देवता है जिसको पुनर्जन्म रहित बताते हैं, अजन्मा बताते
हैं. ओनली शंकर इज सच अ डीटी हु इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम रीबर्थ, हु इज सेड टू बी अजन्मा, मीनिंग द वन हु इज नेवर बोर्न.
वेद का अर्थ क्या हुआ?
व्हाट इज द अनलिमिटेड मीनिंग?
कि वो जन्म मरण के चक्र रूपी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता है.
दैट ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड डाउट इन द फॉर्म ऑफ बर्थ एंड डेथ.
वो एक ही आत्मा ऐसी संगम युग की शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाने वाली पहले मैदान में आती है.
ही इज द ओनली सोल हु प्लेज सच अ पार्ट इन द कॉन्फ्लुएंस एज शूटिंग पीरियड हु कम्स टू द फील्ड फर्स्ट.
जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाली नहीं होती है.
ही नेवर कम्स इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड डाउट.
अटल निश्चय वाली.
ही हैज अनशेकेबल फेथ.
ध्रुव तारा का यादगार बनाया हुआ है.
The memorial of the pole star, Dhruv Tara, pertains to him.
तो वो पुनर्जन्म रहता है.
So he, meaning Shiv, is free from rebirths.
वो आते जरूर हैं.
He definitely comes.
ऐसे नहीं कि जन्म मरण के चक्र में नहीं है तो वो आते ही नहीं है इस धरती पर.
It is not that if he is not in the cycle of birth and death, he doesn't come in this world at all.
धरती पर आते भी हैं और इस सृष्टि पर नीचे आने के बावजूद भी.
ही कम्स इन द वर्ल्ड एंड डिस्पाइट कमिंग डाउन टू दिस वर्ल्ड.
ए पतित पावन आओ.
ओ प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस कम.
पतितों ने किसको बुलाया?
हुम डिड द सिंफुल कॉल?
एवर प्योर को बुलाया कि तुम भी नीचे उतरे आओ.
दे कॉल्ड द एवर प्योर सेइंग यू टू कम डाउन.
हम तो नीचे गिरे हुए हैं।
वी हैव ऑलरेडी फॉलन।
तुम भी क्या करो?
वॉट शुड यू डू एज वेल?
तुम भी नीचे गिरो।
यू टू फॉल।
जो आदमी डूबता है तो डूबने वाला तो चाहता है कि हमको सहारा मिले।
अ मैन हु ड्राउन्स विशेस टू गेट सपोर्ट।
कोई आए हमको और डुबकी मार के हमको नीचे से ऊपर ले जाए।
ही विशेस समवन टू कम एंड डाइव टू टेक देम अप फ्रॉम डाउन।
तो वो आते जरूर हैं।
सो ही डेफिनेटली कम्स।
ऐसे नहीं ऊपर ही बैठे रहते हैं।
इट इज नॉट दैट ही जस्ट सिट्स अबव।
वो नीचे नीचे स्टेज में आते जरूर हैं।
ही सर्टनली कम्स डाउन इनटू द डिग्रेडेड स्टेज।
परंतु उनका दिव्य जन्म है।
बट हिज बर्थ इज डिवाइन।
उनका आना भी कैसा है?
हाउ इज हिज कमिंग एज वेल?
दिव्य।
इट इज डिवाइन।
दिव्यता से भरा हुआ उनका जन्म है।
हिज बर्थ इज फुल ऑफ डिविनिटी।
भागीरथ पर आकर सवार होते हैं।
ही कम्स एंड राइड्स ऑन भागीरथ।
सवार किस पर होते हैं?
हुम डज ही राइड?
भाग्यशाली रथ पर।
द फॉर्चुनेट चैरियट। भाग्यशाली रथ।
उन्होंने भागीरथ का ही अर्थ उल्टा कर दिया।
दे हैव टेकन अ रॉन्ग मीनिंग ऑफ भागीरथ इटसेल्फ।
जो हार्ट फेल होकर के शरीर खत्म कर दे।
द वन हु फिनिश्ड हिज बॉडी ड्यू टू अ हार्ट फेलियर।
तो उसका नाम रख दिया भागीरथ।
ही वॉज नेम्ड भागीरथ।
खांसते खांसते शरीर ही खत्म हो जाए उसका नाम रख दिया भागीरथ।
द वन हुज बॉडी वॉज फिनिश्ड वाइल कॉफिंग वॉज नेम्ड भागीरथ।
अरे भागीरथ तो वो हुआ जो अपने रथ को कंचन काया इसी जन्म में बना ले।
अरे भागीरथ इज द वन हु ट्रांसफॉर्म्स हिज चैरियट मीनिंग बॉडी इनटू अ गोल्डन बॉडी इन दिस वेरी बर्थ।
तो वो भागीरथ संसार में गाया जाएगा भाग्यशाली रथ।
सो दैट भागीरथ विल बी प्रेस्ड इन द वर्ल्ड द फॉर्चुनेट चैरियट।
पतितों को आकर पावन बनाते हैं।
ही कम्स एंड मेक्स द इम्प्योर वंस प्योर।
किसके द्वारा?
थ्रू हुम?
भागीरथ के द्वारा।
थ्रू भागीरथ।
कि ऐसे ही बिना पावन बनाए चले जाते हैं।
और डज ही सिंपली गो बैक विदाउट मेकिंग देम प्योर?
भागीरथ में आएगा तो उस भाग्यशाली रथ के द्वारा क्या करेगा?
वेन ही कम्स इन भागीरथ वॉट विल ही डू थ्रू दैट फॉर्चुनेट चैरियट?
पतितों को पावन बनाएगा कि बिना पावन बनाए वापस चला जाएगा?
विल ही प्यूरिफाई द सिंपल वंस और विल ही गो बैक विदाउट मेकिंग देम प्योर?
फिर वो भागीरथ कहाँ जाएगा?
देन विल ही बी कॉल्ड भागीरथ?
भागीरथ तो वो जिसके संसर्ग संपर्क में आकर के दूसरी भी आत्माएं भाग्य को प्राप्त करें।
भागीरथ इज द वन थ्रू हुज कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन अदर सोल्स ऑल्सो ऑब्टेन देयर फॉर्च्यून।
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का बाप आकर राज समझाते।
द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स द सीक्रेट्स ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन।
जो नॉलेज और कोई मनुष्य नहीं जानते।
ही एक्सप्लेन्स द नॉलेज विच नो ह्यूमन बींग नोज।
कि रचयिता कौन है और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन है।
ही एक्सप्लेन्स हु द क्रिएटर एंड हिज फर्स्ट क्लास क्रिएशन इज।
तो बताओ रचयिता कौन?
सो टेल मी हु इज द क्रिएटर
और उसकी फर्स्ट क्लास रचना कौन?
एंड हु इज हिज फर्स्ट क्लास क्रिएशन।
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते।
ही एक्सप्लेन्स द सीक्रेट ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। समवन सेड द क्रिएटर इज प्रजापिता एंड द क्रिएशन इज।
हाँ रचयिता जरूर साकार में होना चाहिए।
यस द क्रिएटर शुड सर्टनली बी कॉर्पोरियल।
वो साकार के द्वारा ही बिंदु ज्योति बिंदु बाप रचयिता का पार्ट बजाते।
ओनली थ्रू दैट कॉर्पोरियल बीइंग द पॉइंट ऑफ लाइट फादर प्लेस द पार्ट ऑफ द क्रिएटर।
तो वो रचयिता हुआ नई सृष्टि का नई सृष्टि की दुनिया का।
सो ही इज द क्रिएटर ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑफ द गोल्डन एज।
और फर्स्ट क्लास रचना कौन?
एंड हु इज द फर्स्ट क्लास क्रिएशन?
फर्स्ट क्लास रचना हुई ब्रह्मा सो विष्णु।
द फर्स्ट क्लास क्रिएशन इज ब्रह्मा सो विष्णु।
वो हुई फर्स्ट क्लास रचना।
दैट इज द फर्स्ट क्लास क्रिएशन।
उसके आदि मध्यंत रचना का पार्ट क्या हुआ?
What is the part of the creation in the beginning, the middle and the end?
आदि में कौन? आदि में? आदि में फर्स्ट क्लास रचना कौन?
In the beginning, who is the first class creation?
कृष्ण.
कृष्ण.
सतयुग के आदि में होगा कृष्ण.
In the beginning of the golden age, he will be Krishna.
मध्य में होगा राजा विक्रमादित्य. और अंत में?
In the middle, he will be King Vikramaditya. And in the end, Vikramaditya, the king who built the temple of Somnath.
अंत में फिर दादा लेखराज?
In the end, he is Dada Lekhraj again.
Dada Lekhraj? वो first class रचना बच्चा हो गया.
Dada Lekhraj is the first class creation, the child.
First class रचना कौन होती है?
Who is the first class creation?
बच्चा.
A child.
बाप का बच्चा ही उसकी first class रचना होती है, जो बाप को show करता है.
Only the child who reveals his father is the first class creation of the father.
तो रचयिता और रचना की आदि मध्यंत कर रहा तुमने.
So he explains the secret of the beginning, the middle and the end of the creator and the creation.
जो नॉलेज और कोई नहीं समझाएगा, जानते.
He explains the knowledge which no one else knows.
बाप को आप ही अपना आकर के परिचय देना होता है.
The father has to come and give his introduction on his own.
क्या?
What?
उनका परिचय यथार्थ रूप में और कोई नहीं दे सकता.
No one else can give his accurate introduction.
एक तो वो खुद ही आते हैं और खुद ही आकर के अपना परिचय देते.
Firstly, he comes on his own and gives his introduction on coming.
मुख्य बात है इस बाप के परिचय की.
The main thing is the introduction of the father.
और बातें तो सब है ज्ञान की गौड़.
All the other topics of knowledge are secondary.
सामान्य.
General.
लेकिन मुख्य बात क्या है?
But what is the main topic?
बाप का परिचय देना.
To give the introduction of the father.
ये समझ लो मुख्य ज्ञान है.
Consider it to be the main knowledge.
सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है.
Omnipresent is a word of great defamation.
फिर महिमा का अक्षर कौन सा है?
Then which is the word of praise?
एक व्यापी है.
He is present in one being. एक व्यापी.
वो एक में आता है सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए.
He comes in one being to make the whole world pure from impure.
अनेकों में आकर के पतितों को पावन नहीं बनाता.
He does not purify the sinful ones by coming in many.
अनेकों में आकर के पतितों को पावन बनाए तो फिर सब क्या करेंगे?
What will all do if he comes in many to purify the sinful?
अनेकों के साथ संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का कि एक के साथ जोड़ेंगे?
Will they make a connection of the indriya with many or with one? Student said something.
तो फिर क्या, कौन सी दुनिया बनेगी?
Then what kind of world will be created?
ये विचारी नरक की दुनिया वैश्यालय बनेगी या शिवालय बनेगा?
Will an adulterous world of hell, meaning a brothel, वैश्यालय be made? Or will the temple of Shiv, शिवालय be made?
फिर तो वैश्यालय बन जाए.
Then a brothel will be created.
तो जो वैश्यालय बनाने वाले हैं वो ढोल पीटते हैं परमात्मा सर्वव्यापी.
So the creators of the brothel announce publicly, God is omnipresent.
हम भी पतितों को पावन बनाने वाले, तुम भी पतितों को पावन बना ले.
They say, we as well as you are the purifiers of the sinful.
हमसे भी सुनो, उनसे भी सुनो, सबसे सुनो.
Listen to us, listen to them, listen to all.
तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी.
Then you will attain true liberation.
जो संदली पे बैठे तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमें ज्ञान सुनाते.
Whoever sits on the sandali, think that Shiv Baba himself narrates knowledge to you. Sandali, meaning seat on which Baba sits during class.
तुम ऐसे ही समझो शिव बाबा ही हमको दृष्टि देते.
Think that Shiv Baba himself gives you drishti.
तो क्या होगा?
Then what will happen?
तो सर्वव्यापी होगी.
God became omnipresent.
तो वास्तव में पहले मुख्य बात है बाप का परिचय देना.
So in reality, the first and main thing is to give the introduction of the father.
सर्वव्यापी अक्षर बहुत ग्लानि का है. कोई तो मुख से कहते हैं सर्वव्यापी.
Omnipresent is a word of great defamation. Some say through their mouth, that God is omnipresent.
और कोई एक्ट ऐसी करते हैं
एंड सम एक्ट इन सच अ वे
जिससे सबको समझ में आ जाए कि परमात्मा दीदी दादी दादा सबके अंदर परमात्मा आया हुआ है.
दैट ऑल मे अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम सोल हैज कम इन ऑल द दीदीज दादीज एंड दादाज.
ये गीता से ही उन्होंने उठाया है.
दे हैव टेकन इट फ्रॉम द गीता इटसेल्फ.
परमात्मा सर्वव्यापी है.
दैट द सुप्रीम सोल इज ओमनीप्रेजेंट.
हमारी कौन सी गीता है?
विच इज अवर गीता
है? मुरली. तो जो मनुष्यों की लिखी मुरली है जिसमें उन्होंने कृष्ण भगवान वाच
द मुरली इन द मुरली दैट हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन विच दे हैव रिटन गॉड कृष्ण स्पोक.
पिता श्री ब्रह्मा भगवान वाच याद लिख दिया.
पिता श्री गॉड ब्रह्मा स्पोक एंड सो ऑन.
तो उससे ही ये अर्थ निकल पड़ता है क्या?
सो फ्रॉम दिस इटसेल्फ द मीनिंग कम्स आउट. वॉट?
क्यों? तो उसका अर्थ ही झूठा कर दिया.
बिकॉज दे फॉल्सिफाइड द वेरी मीनिंग्स ऑफ इट.
पहले अर्थ शास्त्रों के ऐसे नहीं थे.
अर्लियर द स्क्रिप्चर्स डिडंट हैव सच मीनिंग्स.
बाद में उनके इंटरप्रिटेशन गलत कर दी.
लेटर दे वर रॉन्गली इंटरप्रेटेड.
तो कृष्ण को भगवान समझने के कारण सारी गड़बड़ हुई.
सो द होल कंफ्यूजन हैज अकर्ड ओनली बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग कृष्ण टू बी गॉड.
सर्वव्यापी अक्षर कहाँ से उठाया?
फ्रॉम वेयर डिड दे टेक द वर्ड ओमनीप्रेजेंट?
गीता से ही उठाया सर्वव्यापी अक्षर.
दे टुक इट फ्रॉम द गीता इटसेल्फ.
गीता में ही लिखा हुआ है श्री कृष्ण भगवान वाच.
इट इज रिटन इन द गीता इटसेल्फ गॉड श्री कृष्ण स्पोक.
साकार कृष्ण भगवान हो गया.
द कॉर्पोरियल कृष्ण बिकेम गॉड.
पिता श्री ब्रह्मा भगवान हो गया. शिव बाबा हो गया.
पिता श्री ब्रह्मा बिकेम गॉड. ही बिकेम शिव बाबा.
तो गीता से ये उठाया है और भागवत में दिखाई है कृष्ण के चरित्र.
सो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द गीता एंड दे हैव शोन द एक्ट्स ऑफ कृष्ण इन द भागवत.
ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया की भागवत कौन सी है?
विच इज द भागवत ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स.
जिसमें भगाने की कथा है.
इन विच देर इज द स्टोरी ऑफ कृष्ण मेकिंग द गोपीज रन.
अद्भुत कथा.
अ वंडरफुल स्टोरी. अद्भुत कथा.
अद्भुत कर्म.
अ वंडरफुल एक्ट. अद्भुत कर्म
है. एक अद्भुत जीवन कहानी. कहानी माने कथा.
अ वंडरफुल लाइफ स्टोरी. कहानी मीन्स अ स्टोरी. कथा.
तो उसमें 300-400 जो गोप गोपियों को भगाने की कथा लिखी हुई है उस पुस्तक में.
सो द स्टोरी ऑफ कृष्ण मेकिंग द 300-400 गोप एंड गोपी इलोप विच इज रिटन इन दैट बुक गोप एंड गोपी काउ हर्ड्स एंड हर्ड गर्ल्स हु वर डिवोटेड टू कृष्ण.
वो अद्भुत कर्म किसने किया?
हु डिड दोज वंडरफुल एक्शंस?
बूढ़े ब्रह्मा ने किया वो कार्य क्या?
डिड द ओल्ड ब्रह्मा डू दैट वर्क?
नहीं.
नो.
अरे वो तो शिव बाबा का कार्य था.
अरे इट वॉज द वर्क ऑफ शिव बाबा.
शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा ये कहानी का ये कार्य संपन्न किया था.
शिव बाबा कम्प्लीटेड दिस वर्क थ्रू प्रजापिता.
नाम किसका डाल दिया?
बट हुज नेम डिड द पुट?
रचना ब्रह्मा का.
ऑफ द क्रिएशन ब्रह्मा.
अरे ब्रह्मा तो स्वयं ही बड़ी माँ है तो जरूर कोई बड़े बड़ा बाप भी होगा.
अरे ब्रह्मा हिमसेल्फ इज द सीनियर मदर सो डेफिनेटली देर विल ऑल्सो बी अ सीनियर फादर.
तो गड़बड़ कर दिया ये.
सो दे मेड दिस मिस्टेक.
तो कृष्ण को भगवान ब्रह्मा को भगवान समझने के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है.
सो द होल कन्फ्यूजन इज ड्यू टू कंसिडरिंग कृष्ण ब्रह्मा टू बी गॉड.
कृष्ण का नाम ही निकल जाएगा.
इफ द नेम ऑफ कृष्ण इज रिमूव्ड
तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे.
द बायोग्राफी एक्ट एटसेट्रा एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड.
क्या?
वॉट?
अद्भुत जीवन कहानी में जो बायोग्राफी दिखाई है बैठ ब्रह्मा की.
द बायोग्राफी ऑफ ब्रह्मा दैट हैज बीन शोन इन अ वंडरफुल लाइफ स्टोरी.
वो बायोग्राफी भी सारी उड़ जाएगी.
दैट होल बायोग्राफी विल ऑल्सो बी रिमूव्ड.
कब उड़ जाएगी?
वेन विल इट बी रिमूव्ड?
जब उसमें से गीता में से जो सच्ची गीता है.
वेन फ्रॉम द गीता द ट्रू गीता.
ब्राह्मणों की सच्ची गीता कौन सी है?
विच इज द ट्रू गीता ऑफ द ब्राह्मिन्स?
मुरलियां.
द मुरलीज.
मुरलियों में से पिता श्री ब्रह्मा का नाम उड़ाई दिया जाए.
when the name of Pitashri Brahma is removed from the Murlis,
तो बायोग्राफी चरित्र आदि सब उड़ जाएंगे.
Then the biography, acts, etc., everything will be removed.
कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, ये तुम सिद्ध करके बताएंगे.
You will prove that Krishna is not God of the Gita.
क्या?
What?
कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, जो गीता का भगवान होगा वो तो राजधानी स्थापन करके दिखाएगा.
Krishna is not God of the Gita. God of the Gita will establish the capital.
वो पुरानी दुनिया का, पुराने संगठन का विनाश करके दिखाएगा.
He will destroy the old world, the old gathering.
और धर्म पिता ये कार्य नहीं करते.
The other religious fathers don't do this work.
परमात्मा बाप आकर के ये कार्य करते हैं.
The Supreme Soul Father comes and does this work.
कि सब धर्म की स्थापना और असत धर्मों का विनाश करते.
He does the establishment of a true religion and the destruction of the false religions.
असत राजधानी की स्थापना नहीं करते हैं.
He doesn't establish the false capital.
वो सत राजधानी, जो सच्ची राजधानी है स्वर्ग की, उसकी स्थापना करते हैं.
He establishes the true capital of heaven.
और जितनी राजाइयां हैं दुनिया में वो सब खलास हो जाती.
And all the other kingdoms that are present in the world are destroyed.
तो जब तुम ये सिद्ध करके बतलाएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा.
So, when you prove it and tell this to people, your name will become very famous.
नाम बाला कब होगा, किस बात से?
When will your name become famous? Through what?
गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इस बात से ही नाम बाला होंगे.
Your name will become famous only by proving the fact Krishna is not God of the Gita.
तो ये तो बहुत ढोल पीट दिया तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया में.
The so-called Brahma Kumar Kumaris announced publicly
कि गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु है.
That the incorporeal Shiv, the point of light, is God of the Gita.
साकार कृष्ण गीता का भगवान नहीं है.
The corporeal Krishna is not God of the Gita.
चारों तरफ दुनिया में, देश विदेश में ढोल पिट गए, आवाज हो गई.
The announcement was made publicly everywhere. In the country as well as abroad, the voice spread.
Then क्या हुआ?
Then what happened?
नाम बहुत बाला हुआ किसी का?
Did anyone's name become very famous?
नहीं हुआ.
No, it didn't.
हो नहीं सकता.
It cannot happen.
जो ढोल पीटने वाले हैं वो खुद इस बात की गहराई को नहीं जानते हैं.
The ones who announce it publicly themselves don't know the depth of this topic.
खुद वो ही गलती करते हैं जो दुनिया भी भक्ति मार्ग वालों ने की.
They themselves do the mistake that the worldly people of the path of bhakti did.
उन्होंने क्या गलती की?
What mistake did they do?
निराकार की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया.
Instead of the incorporeal one, they put the name of the corporeal Krishna.
साकार देवता का नाम डाल दिया.
They put the name of a corporeal deity.
ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया?
Similarly, what did the Brahma Kumar Kumaris do?
शिव बाबा की जगह पिता श्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया.
Instead of शिव बाबा, they put the name of पिता श्री ब्रह्मा.
तो गलती तो वो ही की जो दुनिया वालों ने की.
So, they did the same mistake that the worldly people did.
तो जो दुनिया वाले गलती कर रहे हैं,
the mistake that the worldly people are doing,
वो ही फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले गुरु गलती कर रहे हैं.
The gurus who teach are doing the same.
आप गुरु जी बैंगन खाएं, दूसरे को तरकीब बताएं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए.
It is like a guru who himself eats brinjal and asks others not to eat it.
तो चेले चपाते मानेंगे?
Then will the followers accept?
उनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ सकता.
It can't have any effect on them.
दूसरा पेज.
Second page.
तुम बच्चे आपस में जब मिलते हो तो मीटिंग करो कि क्या उपाय निकालें जो गीता के भगवान की बात सिद्ध हो जाए.
When you children meet together, have a meeting about what method you should adopt so that the existence of God of the Gita is proved.
उपाय क्या निकालें?
What method should you adopt?
गीता में कृष्ण का नाम होने के कारण ही लड़ाई आदि की बात लिख दी है.
The topic of war etc. has been written in the Gita. because there is the name of Krishna in it.
अगर गीता में कृष्ण का नाम न होता,
if the name of Krishna wouldn't have been put in the Gita,
तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं.
There would have been no question of war.
क्योंकि साकार ही लड़ाई लड़ते हैं और लड़वाते हैं.
Because only corporeal beings fight a war and make others fight.
निराकार ज्योतिबिंदु,
the incorporeal point of light,
जो निराकारी स्टेज वाला होगा वो तो मारा मारी नहीं करना सिखाएगा.
The one who is in an incorporeal stage won't teach to fight.
जो देह अभिमानी होते हैं वो मारा मारी करते हैं और दूसरों से कराते हैं.
Those who are body conscious fight and make others fight.
जो देह अभिमानी होगा ही नहीं तो वो निराकारी स्टेज में दूसरों को टिकाएगा.
The one who isn't body conscious at all will make others stabilize in the incorporeal stage.
निसंकल्पी होना सिखाएगा.
He will teach them to become nisankalpi, meaning beyond thoughts.
वो तो कर्मों की गुह्य गति बताएगा.
He will tell them the hidden course of deeds.
कि अगर किसी ने तुमको दुख दिया है तो मारपीट करने से वो दुख देना बंद नहीं करेगा.
If somebody has given you sorrow, he won't stop giving you sorrow if you fight.
कब बंद करेगा?
When will he stop fighting?
जब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए.
When it sits in your intellect,
कि तुम्हारे कर्मों का जो पूर्व जन्म का लेखा जोखा है जब तक रहा हुआ है तब तक तुमको कोई दुख दे सकता है.
That until your account of actions of the previous births are pending, meaning to be settled, someone can give you sorrow.
जब वो लोखा जोखा समाप्त हो जाएगा तो कोई तुमको दुख नहीं दे सकता.
And when those accounts are over, no one can give you sorrow.
तो बाप तो निराकारी निसंकल्पी स्टेज में रहना सिखाएंगे.
So the father will teach you to stay in the incorporeal, निसंकल्पी स्टेज.
वो किसी से युद्ध करना नहीं सिखाएंगे. स्थूल युद्ध की बात नहीं.
He will not teach you to fight with anyone. It is not about a physical war.
तो ऐसा पर्चा बना करके उसमें चित्र आदि भी लगा करके.
So prepare such a leaflet and paste pictures etc. on it.
क्या कहा?
What was said?
ऐसा पर्चा बनाओ.
Make such a leaflet.
क्या पर्चा बनाओ?
What kind of a leaflet should you make?
कि गीता का भगवान, जो सच्ची गीता मुरलियां हैं उनको आप भगवान, उन मुरलियों का, उन गीता का, गीता माता का, गीता पति भगवान कोई कृष्ण अर्थात ब्रह्मा नहीं है.
That God of the Gita, God of the true Gita, the Murlis, the Gita, God the husband of the mother Gita is not Krishna, meaning Brahma.
ऐसा पर्चा बनाओ.
Prepare such a leaflet.
उसमें चित्र आदि भी लगाओ.
Also paste pictures etc. in it.
कि गीता माता कौन है?
To show who Gita माता, meaning Mother Gita is.
उन्होंने तो गीता माता किताब बनाई दी.
They considered the book to be Gita Mata.
अरे कोई कागज की किताब माता होगी क्या?
अरे will a book of paper be a mother?
अरे माता तो चैतन्य में होती है.
अरे a mother is living.
जैसे उन्होंने कह दिया धरणी माता, भारत माता.
Just like they said, Mother Earth, धरणी माता, मदर इंडिया, भारत माता.
तो लोगों ने क्या समझ लिया?
So what did people think?
कि भारत कोई जमीन का नाम है, भारत माता.
भारत, भारत माता इज द नेम ऑफ सम लैंड.
अरे भारत माता जब कहा गया तो जरूर उसके साथ पिता भी होगा.
अरे when it is said भारत माता, then there will certainly be a father too with her.
है? बाल बच्चे भी होंगे उन माता पिता की गोद में पलने वाले भारतवासी.
There will be children as well, meaning the Bharatvasis, meaning residents of India, who receive sustenance on the lap of the mother and father.
तो उस बात को भूल गए.
So they forgot that.
तो ऐसे ही यहाँ तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या कर दिया?
Similarly, what did the so-called ब्रह्मा कुमार कुमारीज do here?
लड़ाई आदि की बातें लिख दी, ब्रह्मा का फोटो छपाई दिया.
They wrote about war etc. and printed the photo of Brahma.
तो अब तुम क्या करो?
Now what should you do?
कि ऐसा पर्चा बनाओ उसमें चित्र आदि भी लगाओ.
Prepare such a leaflet, paste pictures etc. in it as well.
हाँ.
Someone said something. Yes.
कौन सा चित्र लगाओ?
Which picture should you paste?
निराकार भगवान, निराकारी स्टेज वाला जो गीतापति भगवान है उसका भी चित्र लगाओ. और गीता माता जो ब्रह्मा है उसका भी चित्र लगाओ.
Paste the picture of the incorporeal God, God the husband of the Gita, who is in the incorporeal stage, as well as the picture of Gita Mata, who is Brahma.
एक तो टाइटल दारी ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ वाला, मूछा फरकाने वाला.
One is the title holder Brahma, the one with beard and moustache, the one who twitches his moustaches.
उसका भी चित्र लगाओ.
Paste his picture as well.
और दूसरा?
And secondly,
जो ओरिजिनल ब्रह्मा है.
The one who is the original Brahma.
ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ बड़ी माँ सारी सृष्टि की.
ब्रह्म means senior and माँ means mother, the senior mother of the whole world.
तुमेव माता च पिता कहते हैं ना.
It is said you alone are the mother and the father, isn't it?
तो जो माता के रूप में भी आता है, पिता के रूप में भी आता है, सारी दुनिया उन माता पिता को मानती होगी.
So the one who comes in the form of a mother as well as a father, the whole world will accept those mother and father.
सारी दुनिया.
The whole world.
तो सारी दुनिया तो एडम ईव को ही मानती है.
The whole world accepts only Adam and Eve.
क्या?
What?
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को ईव भी मान ले और ब्रह्मा को एडम भी मान ले.
It is not that they would accept Brahma to be Eve as well as Adam.
ना?
No.
सारी दुनिया के सामने तो वो प्रत्यक्ष ही नहीं हुए.
He wasn't revealed in front of the whole world at all.
पहले ही शरीर छोड़ करके चले गए तो सारी दुनिया कैसे मान लेगी?
He left the body and went away before that. So how will the whole world accept him?
तो उसमें चित्र आदि लगाओ, माता का भी तो पिता का भी.
So paste pictures etc. in it. Paste pictures of the mother as well as the father.
फिर एरोप्लेन से वो पर्चे गिराने जाएंगे.
Then you should drop those leaflets from an aeroplane.
उन पर्चियों में लिख दें कि इस कारण भारत कंगाल बना है.
You should write in those leaflets that this is the reason Bharat has become poor.
भारत कंगाल क्यों हुआ?
Why did Bharat become poor?
ये कारण हुआ कि गीता का भगवान हाँ कृष्ण बनाई दिया, बच्चे को बनाई दिया.
The reason is that they made Krishna, the child, God of the Gita.
तो जब ऐसा जुल्म किया जाएगा.
So when such injustice is done,
कि बाप की जगह बच्चे को गीता का पति बनाई दिया जाएगा.
That the child is made into the husband of the Gita in the place of the father.
गीता माता भी इस बात को भूल जाए.
Even गीता माता forgets this.
क्या? किस बात को?
What? Which topic?
कि मेरा पति कौन है?
Who is my husband?
जैसे रशिया में होता है, रूस में क्या होता है?
Like it happens in Russia. What happens in Russia?
बच्चा पैदा होता है. पैदा होने के बाद उसको?
A child is born. After being born, he is.
नहीं?
Someone said something. No.
नर्सिंग होम में डाल दिया जाता.
He is put in a nursing home.
नर्सिंग होम से बड़ा होता है तो उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता.
When he grows up in the nursing home, he is put in a hostel.
नर्सरी स्कूल में.
A nursery school.
फिर बड़ा होता है तो बड़े हॉस्टल में डाल दिया जाता.
When he grows up, he is put in a higher hostel.
और बड़ा हुआ तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया.
When he grows up further, he is put in a training school.
और ट्रेनिंग स्कूल से निकला तो वो राष्ट्र की संपत्ति बन गई.
And when he comes out of the training school, he becomes the property of the nation.
अब वो सरकारी कार्यकाल कर रहा है, होटलों में रहता है.
Now he is doing a government job and lives in hotels.
बच्चा 17-18 साल का नौजवान हो गया.
The child grows up into a young man of 17 to 18 years.
और उसको पता ही नहीं हमारी माँ कौन सी है.
And he doesn't even know हु इज मदर इज।
20-21-22 साल का 25 साल का हो जाने के बाद माँ उसकी सामने आ जाए तो पहचान पाएगा? नहीं।
आफ्टर बिकमिंग 20, 21, 22, 25 years old, इफ हिज मदर कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम विल ही बी एबल टू रिकॉग्नाइज हर? नो।
तो बच्चा तो बेचारा बच्चा।
सो द चाइल्ड इज अ पुअर चाइल्ड।
और माँ तो एजड होगी।
एंड द मदर विल बी एज्ड।
उसको पता ही नहीं मेरा बच्चा कौन।
शी डजंट नो एट ऑल हु हर चाइल्ड इज।
तो होटलों में रहना, होटलों में जिंदगी बिताना।
सो व्हाइल लिविंग इन होटल्स, स्पेंडिंग देयर लाइफ इन होटल्स,
तो क्या संसर्ग संपर्क नहीं हो सकता क्या?
कांट देयर बी कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन बिटवीन देम?
हैं? तो क्या हुआ?
सो व्हाट इज दिस?
तो इसी दुनिया में ऐसे ऐसे देश भी हैं।
देयर आर सच कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ
कि जहाँ भगवान बाप रचयिता की और रचना की जानकारी नहीं है।
वेयर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ गॉड द फादर द क्रिएटर एंड द क्रिएशन।
बाप कौन है और बच्चा कौन है ये पता नहीं।
दे डोंट इवन नो हु द फादर इज एंड हु द चाइल्ड इज।
तो ऐसा जुल्म जिससे बड़ा जुल्म कोई होता नहीं, अधर्म, वो कर दिया भारतवासियों।
सो द भारतवासी इज कमिटेड सच एन इनजस्टिस बियॉन्ड विच देर इज नो बिगर इनजस्टिस सच अनराइटियसनेस।
बच्चे को बाप पति बनाई दिया गीता का।
दे मेड द चाइल्ड द फादर द हस्बैंड ऑफ द गीता।
गीता माता को भी पता नहीं कि मेरा पति कौन है वास्तव का, वास्तव में जन्म जन्मांतर का।
इवन गीता माता डजंट नो हु हर हस्बैंड ऑफ मेनी बर्थ्स इज इन रियलिटी।
तो जब ऐसी स्टेज हो जाती है तब भारत का हाल क्या होता है?
सो व्हाट बिकम्स द कंडीशन ऑफ भारत व्हेन इट रीचेस सच अ स्टेज?
भारत कंगाल हो जाता है।
भारत बिकम्स पुअर।
बैगर के रूप में दिखाया।
ही हैज बीन शोन एज अ बेगर।
कैसा कंगाल?
पुअर इन व्हाट वे?
विदेशी उसको भीख देते हैं।
द फॉरिनर्स गिव हिम आर्म्स।
तो उसमें लिखते हैं कि इस कारण भारत कंगाल बना है।
सो राइट इन इट मीनिंग द लीफलेट दैट भारत हैज बिकम पुअर बिकॉज ऑफ दिस।
फिर बाप आकर के राइट बना दे।
देन द फादर कम्स एंड मेक्स हिम राइट।
कंगाल भारत को, बेगर भारत को, बेगर टू प्रिंस बनाते।
ही मेक्स द पुअर भारत द बेगर भारत फ्रॉम बेगर टू प्रिंस।
बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते।
द फादर कीप्स एक्सप्लेनिंग द मेन टॉपिक्स।
तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस।
इफ यू गेन विक्ट्री बाय प्रूविंग दिस वन मेन टॉपिक देन दैट्स ऑल।
तुमने समझ लो जीत पाई ली।
कंसिडर दैट यू हैव बिकम विक्टोरियस। एंड ऑफ द कैसेट।